आगे सबक देखिए भाई, वइदा तज़व्वजह अला अल्फिन अला अल्ला युखरिजहा मिनल बल्दती औ अला अल्ला यतज़व्वज अलैहा उखरा फइन वफा बिश्शर्ति फलहल मुसम्मा लिअन्नहु सलह महरन वकद तम रिज़ाहा बिही وَإِن تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى أَوْ أَخْرَجَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ اگر کسی شخص نے کوئی آزاد شخص ہے اس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور مہر جو ہے اپنی ایک سال کی خدمت مقرر کی یا مہر جو ہے تعلیم القرآن مقرر کی تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک دونوں صورتوں میں مہر مثل آئے گا کیونکہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے اور آزاد خاوند کی خدمت وہ بھی مال نہیں اور تعلیم القرآن یہ بھی مال نہیں ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم القرآن تو مال نہیں وہاں تو مہر مثل ہی آئے گا لیکن اگر آزاد خاوند کی خدمت کی شرط لگائی تو وہ تو مال ہے لیکن وہ خاوند بیوی کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ اس صورت میں تو قلب الموضوع لازم آئے گا. نکاح تو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ بیوی خادمہ ہوگی اور خاوند مخدوم ہوگا لیکن اگر آزاد خاوند کی خدمت کو مہر قرار دیا جائے تو پھر یہ نکاح جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کو الٹا دینا اس کو پلٹ دینا لازم آئے گا کہ بیوی مخدومہ بن جائے گی اور خاوند خادم بن جائے گا. تو خاوند کی خدمت مال تو ہے لیکن بیوی کے حوالے نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت کے اندر اس چیز کی قیمت آیا کرتی ہے. تو یہی خاوند اگر کسی اور شخص کی ایک سال خدمت کرے تو اس ایک سال کی خدمت کی جو قیمت بنتی ہے اب وہ بیوی کے حوالے کرنا پڑے گی. میں نے بتلایا تھا کہ شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافع ہیں یہ مال نہیں. وجہ یہ کہ ان کے اندر بقا نہیں, بقا ہوتی تو پھر ہم ان کو مال قرار دیتے. یہ تو ہر ہر لمحے کے اندر پرانے منافع ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نئے منافع آتے جا رہے ہیں. جیسے ایک مکان کی رہائش ہے تو ہر ہر لمحے میں نئی نئی رہائش آ رہی ہے اور پرانی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ مکان کی 6 مہینے کی رہائش اکٹھی کر لیں اور پھر کسی کو اکٹھی اجارے پر دے دیں, ایسا نہیں کر سکتے. یا اسی طرح آزاد آدمی کی جو خدمت ہے وہ بھی اس کے منافع بھی ہر ہر لمحے میں گزرتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص اپنی پوری سال کی خدمت جمع کر لے اور پھر کسی کے ساتھ اس پر عقد اجارہ کر لے. تو منافع کے اندر بقا ہے ہی نہیں. جب ان میں بقا نہیں تو یہ مال نہیں. البتہ عقد اجارہ کے اندر تو ان کا عوض لیا جاتا ہے. مکان آپ کرائے پر دیتے ہیں, اس کی اجرت لیتے ہیں, مزدور آپ لے کر آتے ہیں, وہ آپ کی خدمت اور آپ کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کو مزدوری دیتے ہیں. تو اجارے کی قیمت تو دی جاتی ہے. تو اس کا جواب شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے جو عقد اجارہ کے اندر منافع کی قیمت کی اجازت دی ہے وہ ضرورت اور حاجت کی وجہ سے دی ہے. اس لیے کیونکہ انسان محتاج ہے. مثلا کسی کا اپنا گھر نہیں ہے تو اسے رہائش کے لیے کوئی جگہ چاہیے تو وہ کرائے پر لے لے گا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص ایک کام خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اجرت پر رکھ لیتا ہے, وہ اس کا وہ کام کر دیتا ہے. تو انسان محتاج ہے بھائی. تو اس احتیاج اور ضرورت کی وجہ سے شریعت نے منافع کو اجارے کے اندر مال قرار دیا ہے لیکن ویسے یہ مال نہیں ہے بھائی. تو یہاں تو وہ نکاح کے اندر اپنی خدمت کو مقرر کر رہا ہے اور یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے اس کو مال قرار دینے کی. لہذا یوں سمجھا جائے گا جیسے کچھ مقرر ہی نہیں کیا. اور جب کچھ مقرر نہیں کیا تو پھر اس صورت میں مہر مثل آتا ہے تو مہر مثل دینا پڑے گا. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر خاوند غلام تھا اور اس نے ایک سال کی خدمت کی شرط پر کسی عورت سے نکاح کیا اپنے آقا کی اجازت سے تو اس عورت کا حق اس غلام کی خدمت ہی ہے بھائی. इस गुलाम की खिदमत ही है। और इस पर इश्काल होता है कि यहां पर भी तो कल्ब मौजू लाजिम आता है, तो जवाब उसका साहिब हिदाया ने बतलाया था कि गुलाम जब अपने आका की इजाजत और उसके हुक्म से उस औरत की खिदमत कर रहा है तो मानवी एतबार से वो अपने आका ही की खिदमत कर रहा है। और फिर मैंने बतलाया था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इन सूरतों में जो चीज महर मुकरर की है वही उस औरत का हक होगा, यानी तालीमुल कुरान मुकरर की है तो वही औरत का हक है, और अगर खावंद की खिदमत जो है वो महर मुकरर की है तो चाहे खावंद आजाद हो चाहे गुलाम हो यही खिदमत उसका हक होगा। वजह यह कि उनके नजदीक, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, महर का माल होना जरूरी नहीं है, गैर माल जैसे तालीमुल कुरान वगैरह है वो भी उनके नजदीक महर बन सकता है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह का जाबता यह है कि जिस चीज का भी इवज लेना जायज है, जिस चीज का भी इवज लेना जायज है शर्त के जरिए, इजारे के जरिए, तो वो चीज खुद भी इवज बन सकती है, लिहाजा उसको महर करार दिया जा सकता है क्योंकि महर भी इवज होता है। तो वो फरमाते हैं कि खावंद की खिदमत की शर्त लगाई या तालीमुल कुरान की शर्त लगाई तो वही औरत का हक होगा। और वो खावंद की खिदमत को कियास करते हैं किसी दूसरे आदमी की खिदमत की शर्त लगाने पर। वो फरमाते हैं कि ए अहनाफ, अगर खावन किसी औरत से निकाह करता है और महर यह मुकरर करता है कि उसका कोई साथी है वो इस औरत की खिदमत करेगा एक साल तक, तो ए अहनाफ तुम्हारे नजदीक ये जायज है। मालूम हुआ आजाद आदमी की खिदमत वो भी महर बन सकती है। और नीज इसी तरह ए अहनाफ, अगर महर जो है बीवी की भेड़ बकरियां चराना मुकरर हुआ तो आपके नजदीक औरत इसी की हकदार होगी, खावंद को एक साल तक उसकी भेड़ बकरियां चराना पड़ेंगी। तो वो आजाद खावंद की खिदमत को कियास करते हैं रजुले आखर की खिदमत पर या खावंद के बकरियां चराने पर, और ये दो चीजें तो अहनाफ के नजदीक भी जायज हैं, तो फिर आजाद खावंद की खिदमत भी महर होना जायज है। भाई बात समझ में आ गई। उसके बाद साहिब हिदाया ने हमारी दलील जिक्र फरमाई थी कि हमारे नजदीक महर का माल होना जरूरी है, इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे लिए इन मुहर्रमात के अलावा बाकी औरतें हलाल हैं, अंतब तक वो भी अमवालिकुम, कि तुम उनको अपने माल के जरिए तलाश करो। मालूम हुआ महर देना भी जरूरी और महर का माल होना भी जरूरी है भाई, जबकि आजाद आदमी की खिदमत तो माल नहीं है लिहाजा वहां महर मिसल आ जाएगा, और जबकि गुलाम की खिदमत जो है वो माल है बाई लिहाज कि जब गुलाम किसी की खिदमत करेगा तो गुलाम की जात ही उसके हवाले करना पड़ेगी और गुलाम की जात तो माल है, गुलाम को तो खरीदा जाता है बेचा जाता है वो माल है। तो देखो यहां गोया गुलाम की जात उसके हवाले कर दी गई एक साल के लिए। बात समझ में आ गई। और दूसरा जाब्ता हमारा यह है कि औरत किसी भी हाल के अंदर अपने खावंद की खिदमत की मुस्तहिक नहीं हो सकती। वैसे खावंद खिदमत करे वो तो अलग बात है, लेकिन निकाह के जरिए बाकायदा खावंद पर लाजिम हो जाए खिदमत, ऐसा नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसके अंदर कल्बुल मौजू है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इस आजाद खावंद की खिदमत को कियास किया था किसी दूसरे आदमी की खिदमत पर, तो उसका भी जवाब दिया साहिब हिदाया ने कि किसी कोई दूसरा आदमी अगर खिदमत करेगा तो वहां तो कोई मुनाकजा और मुनाफात नहीं, वहां तो कल्ब मौजू लाजिम नहीं आता। और नीज उन्होंने कियास किया था खावंद के बकरियां चराने पर, तो उसका भी जवाब दिया कि बकरियां चराना ये औरत की खिदमत की कबील से नहीं है, ये तो घर के कामों में से है भाई, और घर के काम मियां बीवी मिलकर ही करते हैं, बीवी घर के अंदर के काम करती है तो खावंद घर के बाहर के काम करता है, तो ये घर के कामों में से हुआ, ये बकरियां चराना ये बीवी की खिदमत की कबील से नहीं है लिहाजा ये जायज है। और फिर दूसरा जवाब दिया कि इसके अलावा हमारी दूसरी रिवायत के मुताबिक खावंद का बकरियां चराना यह भी महर मुकर्रर नहीं हो सकता, और मैंने बताया उलमा ने इस रिवायत को ज्यादा सही करार दिया है। तो लिहाजा जब हमारे नजदीक खावंद की बकरियां चराना वो महर बन ही नहीं सकता तो आप उस पर कयास भी नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद साहिब हिदायत ने चंद मसाइल जिक्र फरमाए कि अगर निकाह के अंदर महर ऐसी चीज मुकरर की जो तायीन से मुतायन नहीं होती, या ऐसी चीज महर में मुकरर की जो तायीन से मुतायन हो जाती है, और फिर औरत जो है ये दोनों चीजें चाहे तायीन से मुतायन हो या मुतायन ना हो, इन पर औरत कब्जा करके माफ कर दे या वैसे माफ कर दे, तो फिर इस सूरत में क्या हुक्म होगा? तो हर हर सूरत का हुक्म बयान कर दिया साहिब हिदाया ने। मैंने बतलाया था कि जो दिरहम और दीनार हैं ये तायीन से भी मुतायन नहीं होते। मसलन आपसे मैंने एक किताब खरीदी और 10 दिरहम मैंने सामने रखे और कहा कि इन दिरहमों के इवज मैंने आपसे ये किताब खरीद ली, तो आपके और मेरे दरमियान ईजाब और कबूल हुआ और मैं किताब का मालिक बन गया। आपने किताब मेरे हवाले कर दी, अब वो 10 दिरहम मेरे सामने पड़े हैं जिन पर मैंने आपसे बैअ की है। लेकिन याद रखो, मैंने बेशक इशारा करके कहा था इन दिरहमों के बदले में आपसे किताब खरीदता हूं, लेकिन फिर भी दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते, लिहाजा मेरे ऊपर यही दिरहम देना आप पर लाजिम नहीं है। मैं चाहे यही वाले दिरहम दे दूं चाहे कोई और दिरहम दे दूं, बाए एतराज नहीं कर सकता, क्योंकि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते आकद में भी और फसख के अंदर भी। मसलन यही बैअ में आपसे फसख करता हूं तो मैं आपको किताब वापस करता हूं और आप मुझे 10 दिरहम दे देते हैं, तो अब आप पर जरूरी नहीं कि वही दिरहम मुझे वापस लौटाएं जो मैंने आपको दिए थे। आप चाहे वही दिरहम दे दें, आप चाहे कोई और दिरहम दे दें, मुश्तरी जो बैअ को फसख कर रहा है वो यहां कोई एतराज नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि दिरहम और दीनार उकूद में और फसूख में मुतायन नहीं होते। तो दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, जबकि इसके मुकाबले में मकीलात और मौजूनात जो हैं, यानी वो चीजें जिनको किसी बर्तन में मापा जाता है या वो चीजें जिनका वजन किया जाता है, याद रखो ये भी वैसे मुतायन नहीं होते, लेकिन अगर इनकी तरफ इशारा कर दिया जाए फिर ये मुतायन हो जाएंगे, फिर ये मुतायन हो जाएंगे। मसलन मेरे पास 10 बोरी गंदुम सामने पड़ी हुई है, मैं आपसे कहता हूं ये गंदुम मैंने आपको 100 दिरहम में फरोख्त कर दी, आप कहते हैं मुझे मंजूर है, तो याद रखो अब ये जो गंदुम है ये मसलन आजकल मौजूनात में से है, कदीम जमाने में ये मकीलात में से थी, यानी इसको एक मखसूस मकदार का बर्तन होता था जिसको कफीज कहते थे, उसमें माप कर इसको बेचा जाता था, और आजकल भी दुनिया के बाज इलाकों में इसी तरह राइज है, लेकिन आम तौर पर अब इसकी बैअ जो है वजन के जरिए की जाती है। तो ये जो 10 बोरी गंदुम है ये मौजूनात में से है मसलन, तो ये मौजूनात में से है और मैंने इसकी तरफ इशारा किया तो अब ये मुतायन हो गई, लिहाजा अब मुझे आपको यही गंदुम देना पड़ेगी भाई। तो ये इशारे से मुतायन हो जाती हैं ये मकीलात और मौजूनात, हां अगर इशारा नहीं किया तो फिर ये मुतायन नहीं है। मसलन आपने मुझसे 10 बोरी जो है गंदुम खरीदी, लेकिन तायीन मैंने नहीं की कौन सी वाली गंदुम मैं आपको 10 बोरी दूंगा। मसलन मेरे पास 100 बोरियां पड़ी हुई हैं, आपने उन 100 बोरियों में से 10 बोरियां मेरे से खरीद ली, लेकिन मैंने इशारा नहीं किया कि ये वाली 10 बोरी दूंगा, तो उन 100 में से जौन सी मर्जी 10 बोरियां मैं उठाकर आपको दे सकता हूं और आप एतराज नहीं कर सकते, क्योंकि यहां मैंने इशारे के जरिए उनको मुतायन किया ही नहीं भाई। जब आपकी और मेरी बैअ हुई मैंने कहा मैंने आपको 10 बोरी गंदुम बेच दी और आपने कहा मैंने मंजूर की, तो हम दोनों के दरमियान बैअ हो गई, अब मेरे जिम्मे 10 बोरी गंदुम आ गई, मुतायन नहीं हुई ये वाली 10 बोरी, बस मेरे जिम्मे 10 बोरी आ गई, तो मैं इन 100 बोरियों में से जौन सी मर्जी 10 बोरियां उठाकर आपको दे सकता हूं और आप एतराज नहीं कर सकते। तो मालूम हुआ दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते, जबकि मौजूनात और मकीलात वो वैसे तो मुतायन नहीं होते लेकिन बाकायदा उनकी तरफ इशारा कर दिया जाए फिर वो भी मुतायन हो जाते हैं। जबकि इनके अलावा बाकी सामान हैं और कोई भी चीज है, मसलन बर्तन हैं या कपड़े हैं या भेड़ बकरियां हैं या गाय हैं या जमीन वगैरह है, ये सब चीजें तायीन से मुतायन हो जाती हैं। तो ये चीजें तायीन से मुतायन हो जाया करती हैं। तो अब बात चल रही थी एक शख्स एक औरत से निकाह करता है तो वो इन चीजों में से या तो ऐसी चीज जिक्र करेगा महर के तौर पर जो तायीन से मुतायन नहीं होती, मसलन दिरहम और दीनार, या इसी तरह मकीलात और मौजूनात हैं बगैर इशारे के, तो फिर इस सूरत में क्या हुक्म होगा। और अगर वो निकाह के अंदर कोई सामान वगैरह मुकरर करता है जो तायीन से मुतायन हो जाता है तो फिर इस सूरत में क्या हुक्म होगा। साहिब हिदाया ने हर सूरत की मुकम्मल तफसील बयान फरमाई थी। तो पहली सूरत ये जिक्र फरमाई, मसलन एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और महर जो है वो 1000 दिरहम मुकरर किए। अब दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते। फिर निकाह करने के बाद इस शख्स ने इस औरत को 1000 दिरहम हवाले कर दिए, औरत ने उन दिरहमों को अपने कब्जे में लिया और फिर उसी वक्त खावंद को वापस कर दिए कि बस ये आप मेरी तरफ से रखें। तो अब देखो औरत ने कब्जा करने के बाद फिर वो दिरहम खावंद को वापस किए हैं और फिर खावंद जो है सोहबत से पहले इस औरत को तलाक दे देता है, और जब सोहबत से पहले तलाक दी जाए तो फिर खावंद पर निस्फ महर लाजिम आता है। लिहाजा फुकहा फरमाते हैं कि इस सूरत में खावंद निस्फ महर के अंदर औरत पर रुजू कर सकता है। खावंद कहेगा कि मैंने तो तुम्हें पूरा महर दिया था लेकिन तुम्हें तलाक सोहबत से पहले मिली है तो तुम्हारा हक तो आधा महर बनता है, लिहाजा आधा महर वापस मेरे हवाले करो, तो खावंद रुजू कर सकता है। और आपके जहन में इश्काल आएगा कि उस औरत ने तो सारे दिरहम वापस कर दिए थे, तो जवाब यह कि दिरहम और दीनार तायीन से मुतायन नहीं होते। जिन दिरहमों पर औरत ने कब्जा किया था हम यूं समझेंगे वो और थे, और जो खावंद को वापस दिए हैं वो और हैं भाई, यानी जो खावंद ने दिए थे वो तो महर था और ये जो औरत ने वापस दिए हैं ये औरत की तरफ से हिबा है और तोहफा है भाई। तो ये हिबा और तोहफा है, तो खावंद को अब 1000 दिरहम मिल तो गए लेकिन ये 1000 दिरहम तोहफे के तौर पर मिले हैं। और मैंने बताया था इसमें औरत रुजू भी नहीं कर सकती क्योंकि वैसे तो हिबा में रुजू जायज है, लेकिन मियां बीवी में से कोई किसी को तोहफा दे दे तो वो लाजिम हो जाता है, वहां रुजू भी नहीं किया जा सकता। तो ये औरत भी अपने उन 1000 दिरहमों में रुजू नहीं कर सकती। तो अब अगर औरत कहे कि मैंने तो आपको वो पैसे वापस कर दिए थे, तो जवाब ये कि वो जो दिरहम और खावंद को मिले थे वो बतौर हिबा के मिले थे और खावंद का हक ये था कि इसको निस्फ महर वापस मिलना चाहिए था भाई। बात समझ में आ गई। तो खावंद का जो हक है वो खावंद को अभी भी नहीं मिला भाई, तो खावंद औरत पर रुजू कर सकता है। और यही हुक्म है मकीलात और मौजूनात में जब वो मुतायन ना हो। मसलन खावंद ने निकाह किया औरत के साथ और महर ये मुकरर किया कि मैं तुम्हें 1000 कफीज गंदुम दूंगा, या महर यह मुकरर किया कि मैं तुम्हें 1000 मन चीनी दूंगा, यानी मकीलात या मौजूनात में से कोई मुकरर किया और इशारे से मुतायन नहीं किया, तो अब यह खावंद के जिम्मे में आ गए। जब खावंद के जिम्मे में आ गए और फिर खावंद ने यह लाकर बीवी के हवाले कर दिए, बीवी ने उन पर कब्जा किया और फिर खावंद को वापस कर दिए कि बस ये मेरी तरफ से आप रखें, तो याद रखो इस सूरत में भी निस्फ महर के अंदर खावंद रुजू कर सकता है। वजह यह कि ये मकीलात और मौजूनात भी यहां मुतायन नहीं क्योंकि इनकी तरफ इशारा नहीं किया गया था। तो जो खावंद ने बीवी को दिए थे वो महर के तौर पर थे और जो बीवी ने वापस किए हैं ये उनके मिसल हैं, ये वही वाले नहीं है, तो ये हिबा है। और खावंद जो है वो तो निस्फ महर का मुस्तहिक था कि तलाक कबल दुखूल की वजह से खावंद को निस्फ महर वापस मिलना चाहिए और वो हक अभी तक खावंद को मिला नहीं, लिहाजा वो रुजू कर सकता है निस्फ महर में। बात समझ में आ रही है। उसके बाद दूसरी सूरत जिक्र की साहिब हिदाया ने कि हजार दिरहम पर ही निकाह हुआ और औरत ने कब्जे के बगैर ही वो हजार दिरहम खावंद को माफ कर दिए और फिर खावंद ने सोहबत से पहले तलाक दे दी। तो इस सूरत में हमारे तीनों अइम्मा फरमाते हैं कि खावंद और बीवी एक दूसरे पर रुजू नहीं करेंगे। बीवी ने तो महर माफ कर दिया, लिहाजा इसलिए बीवी भी खावंद पर रुजू नहीं कर सकती। बीवी का हक निस्फ महर बनता था, इसने तो सारे ही माफ कर दिया, तो सारे के अंदर इसका निसफ जो हक बनता था वो भी आ गया, तो बीवी भी खावंद पर रुजू नहीं कर सकती। और खावंद जो है उसका हक यह था कि उसको निस्फ महर माफ होना चाहिए था और बीवी ने तो सारा महर माफ कर दिया। जब तो जब सारा महर माफ किया तो जो खावंद का निस्फ महर हक बनता था वो भी खावंद को माफ हो गया, वो उस तक पहुंच गया। जबकि इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर भी खावंद को उसका हक नहीं मिला, लिहाजा खावंद बीवी पर निस्फ महर में रुजू कर सकता है, निस्व महर में रुजू कर सकता है। वजह यह कि वो फरमाते हैं कि यहां खावंद को जो महर माफ हुआ है उसका सबब और है, और सबब के बदलने से चीज बदल जाती है। खावंद का हक क्या था कि उसको निस्व महर माफ होना चाहिए था तलाक कबला दुखूल की वजह से, और खावंद को जो महर माफ हुआ है वो औरत के इबरा की वजह से हुआ है, औरत के माफ करने की वजह से। तो खावंद का हक क्या था कि उसके लिए निस्फ महर मुआफ होना चाहिए था तलाक कबला दुखूल की वजह से, और यहां माफ हुआ है औरत के इबरा की वजह से, तो खावंद का जो हक था वो उसको नहीं मिला। जबकि हम कहते हैं कि खावंद को उसका हक मिल गया है। सबब वाकई यहां पर अलग अलग हैं, लेकिन सबब तो वसीला होता है किसी चीज तक पहुंचने का, तो वसीले के अंदर अगर इख्तिलाफ आ भी जाए कोई हरज नहीं है, खावंद को उसका हक मिल चुका है। खावंद का हक क्या था कि निस्फ महर उसको माफ होना चाहिए चाहे जिस तरीके से भी माफ हो जाए, और जब औरत ने सारा माफ कर दिया तो निस्फ महर भी क्या हो गया, खावंद को माफ हो गया, खावंद को उसका हक मिल गया, लिहाजा वो रुजू नहीं कर सकता। उसके बाद तीसरी सूरत जिक्र की थी साहिब हिदाया ने कि महर 1000 ही मुकरर हुआ था और फिर औरत ने निसफ पर कब्जा कर लिया और बाकी का निसफ खावंद को माफ कर दिया, बाकी का महर माफ कर दिया। और ये जो निसफ जिस पर औरत ने कब्जा किया है ये चाहे औरत अपने पास रखे या चाहे ये वापस दे दे, दोनों सूरतों में मसला एक ही है। तो एक सूरत क्या हुई, औरत ने निसफ पर कब्जा किया और बाकी निसफ खावंद को माफ कर दिया। दूसरी सूरत यह है कि औरत ने निसफ पर कब्जा किया और बाकी निसफ भी खावंद को माफ किया और यह वाला निसफ भी खावंद को वापस दे दिया। तो इस सूरत में इमाम साहब और साहिबैन का इख्तिलाफ है। इमाम साहब यह फरमाते हैं कि जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार है, जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार है, और जब औरत ने निसफ पर कब्जा किया है और बाकी निसफ खावंद के लिए माफ कर दिया तो खावंद का जो हक था कि उसके लिए निसफ सलामत रहना चाहिए था, खावंद का हक उसको पहुंच गया, लिहाजा खावंद बीवी पर रुजू नहीं कर सकता। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत के अंदर बीवी ने निसफ पर कब्जा किया है तो उस निसफ के निसफ में खावंद उस पर रुजू कर सकता है कि मुझे 250 दिरहम वापस दे दो, क्योंकि यहां औरत ने बाज पर कब्जा किया, सारे पर कब्जा नहीं किया। वो तो वो इस बाज को कयास करते हैं सारे पर, कुल पर, और कुल के अंदर जब औरत सारे पर कब्जा करती थी तो खावंद निसफ में रुजू करता था। तो यहां अगर बाज पर औरत ने कब्जा किया है तो उसके भी निसफ में खावंद रुजू कर सकता है, क्योंकि साहिबैन का जाबता यह है कि अगर महर के अंदर औरत जो कमी कर दे बगैर कब्जा किए ही वो असले आकद के साथ लाहिक हो जाती है, और यूं समझा जाएगा निकाह हुआ ही कम महर पर था, तो औरत ने 500 पर तो कब्जा किया और 500 खावंद को वैसे ही माफ कर दिए, तो यूं समझा जाएगा इस औरत का निकाह हुआ ही 500 दिरहम में था। जब निकाह हुआ ही 500 दिरहम में था और औरत तो 500 पर कब्जा कर चुकी है, और हालांकि औरत का हक 500 नहीं बनता, इसका निसफ इस महर का निसफ बनता है तो निसफ के अंदर खावंद रुजू कर सकता है। तो साहिबैन के नजदीक एतबार मकबूज का है, उस मकबूज के निसफ में खावंद रुजू करेगा, चाहे कुल पर कब्जा करे औरत, चाहे बाज पर कब्जा करे। जबकि इमाम साहब के नजदीक एतबार जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार है, खावंद के लिए निसफ सलामत रहना चाहिए। तो अगर निसफ पूरा सलामत रहा है तो ठीक, अगर निसफ पूरा सलामत नहीं रहा तो जितना बाकी है वो वसूल कर लेगा। मसलन फिर चौथी सूरत उन्होंने जिक्र की कि इसी औरत ने निसफ से कम महर माफ किया, मसलन महर 1000 था तो इसने 800 वसूल कर लिए और 200 दिरहम माफ कर दिए। तो इमाम साहब के नजदीक जो खावंद के लिए सलामत रहा उसका एतबार है, और खावंद के लिए तो 200 दिरहम सलामत रहे, और खावंद का हक कितना बनता था, 500 दिरहम सलामत रहने चाहिए थे, लिहाजा बाकी के 300 में वो रुजू करेगा, औरत से ले सकता है वो। जबकि साहिबैन फरमाते हैं जिस पर औरत ने कब्जा किया है उसका एतबार है, क्यों यूं समझो महर था ही इतना और औरत ने तो 800 पर कब्जा किया है तो गोया महर ही इतना था, तो इस निस्व मकबूज के अंदर खावंद रुजू कर सकता है और 400 उस औरत से खावंद वापस ले सकता है। उसके बाद साहिबे हिदाया ने बतलाया अगर निकाह में ऐसी चीज महर मुकरर की जो तायीन से मुतायन हो जाती है, मसलन मैंने मिसाल जिक्र कर दी कि कोई सामान है, कपड़े हैं, जानवर हैं, गाय बैल बकरी वगैरह है या जमीन वगैरह, ये सब तायीन से मुतायन हो जाते हैं क्योंकि ये न मकीलात हैं न मौजूनात हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस सूरत के अंदर आपको साहिबे हिदाया ने बतलाया कि ये चीजें जो तायीन से मुतायन हो जाती हैं इनमें दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये चीजें सामने पड़ी हैं खावंद ने मुतायन कर दिया ये तुम्हें मैं बतौर महर के दूंगा, या सामने तो नहीं पड़ी लेकिन खावंद ने वैसे जिक्र कर दिया कि मैं फुला किस्म के कपड़े के 50 थान तुम्हें मैं दूंगा, तो वो खावंद के जिम्मे में आ गए। लेकिन बहरहाल दोनों सूरतों में हुक्म एक ही है भाई, चाहे ये चीजें सामने मौजूद हैं और मुतायन हैं, चाहे खावंद के जिम्मे में हैं अभी मुतायन नहीं हुई भाई। तो दोनों सूरतों में एक ही मसला है। मसलन खावंद ने कहा ये वाले 50 कपड़े के थान हैं, इन पर मैं तुमसे निकाह करता हूं, तो ये थान मुतायन हैं। तो अब इसके अंदर ये थान खावंद बीवी को दे देता है और बीवी फिर वापस कर देती है, यानी कब्जा करके वापस करती है, या बगैर कब्जे के ही बीवी कहती है मैंने तुम्हें ये माफ कर दिए। तो दोनों सूरतों में मियां और बीवी दोनों एक दूसरे पर रुजू नहीं कर सकते। बीवी इसलिए रुजू नहीं कर सकती क्योंकि उसने माफ कर दिए, और खावंद इसलिए रुजू नहीं कर सकता क्योंकि यह सामान मुतायन है और खावंद का यह हक बनता था कि इस मुतायन का निसफ खावंद को वापस मिलना चाहिए क्योंकि वह सोबत से पहले तलाक दे रहा है। तो जब औरत ने सारा ही वापस कर दिया या सारा ही माफ कर दिया तो वो जो निसफ खावंद के लिए सलामत रहना चाहिए था वो खावंद के लिए सलामत रह गया। दिरहम और दीनार में औरत वापस करती थी तो वो मुतायन नहीं होते थे, तो वहां खावंद रुजू कर सकता था कि खावंद को उसका हक नहीं मिला, लेकिन यहां खावंद का हक इसी मुतायन चीज में है और यह तो खावंद को वापस मिल गई है, लिहाजा खावंद का हक अदा हो गया। बात समझ में आ गई? और नीज ये तो वो सूरत थी अगर ये मुतायन है, सामने मौजूद हैं, अगर ये मुतायन नहीं खावन के जिम्मे में है, कहते हैं फिर भी हुक्म इसी तरह है, इसलिए क्योंकि जब खावन मसलन खावन के जिम्मे 50 थान हैं लेकिन मुतायन नहीं है, तो अब खावन वो 50 उस किस्म के कपड़े के थान ले आया और औरत के हवाले किए, तो जैसे ही औरत उस पर कब्जा करेगी तो यह थान मुतायन हो गए। और यूं समझा जाएगा कि ये जो कपड़े के थान हैं इन्हीं के ऊपर आकद मुनाकिद हुआ था, यूं समझा जाएगा कि इन्हीं पर आकद मुनाकिद हुआ था और फिर ये औरत वापस कर देती है। तो देखो अब कब्जे की वजह से ये थान मुतायन हो चुके और यूं समझो इसी पर आकद हुआ था और ये सारे औरत खावंद को वापस कर देती है, तो खावंद का हक ये था कि इन्हीं थानों में से निसफ उसके लिए सलामत रहने चाहिए थे, और औरत ने जब सारे वापस कर दिए तो खावंद को उसका हक मिल गया, ये निसफ थान उसके पास वापस पहुंच चुके हैं। यहां हम ये नहीं कहेंगे वो और थान थे, ये और थान हैं क्योंकि ये तो मुतायन हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अब आइए आज के सबक पर, वह ईजा तजा अला अल्फिन अला अल्लाह युखरी जहा मिनल बलदती औ अला अल्लाह यजा अलैहा उखरा फ इन वफा बिशर्ति फलहल मुसम्मा लिअन्नहु सलह महरम व कत्तम रिज़ाहा बिही। भाई अब सूरत ये याद रखो, मसलन निकाह में औरत कोई ऐसी शर्त जिक्र कर देती है जिसमें उस औरत का नफा है और उस शर्त की वजह से औरत अपने महर मिसल से कम महर पर ही राजी हो जाती है। मसलन एक औरत का महर मिसल 1000 दिरहम से ज्यादा है, लेकिन वो एक शख्स से निकाह करती है कि तुम मुझे बतौर महर के 1000 दिरहम दोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे इस शहर से किसी दूसरे शहर मुंतकिल नहीं करोगे, मैं यहीं पर रहूंगी इसी शहर के अंदर। या ये शर्त लगा देती है औरत कि तुम मेरे ऊपर दूसरा निकाह नहीं करोगे, यानी सौकन को लेकर नहीं आओगे। भाई तो अब देखो, औरत ने एक ऐसी शर्त लगा दी जिसमें उसका फायदा है और उस फायदे की वजह से इस औरत का महर मिसल तो 1000 दिरहम से ज्यादा बनता था, लेकिन वो कम महर यानी 1000 दिरहम पर ही राजी हो गई। तो इस सूरत में फुकहा फरमाते हैं कि ये निकाह भी सही और ये शर्त भी सही है, लिहाजा अगर खावंद ने शर्त पूरी कर दी तो फिर औरत को 1000 दिरहम ही मिलेगा, और अगर खावंद ने शर्त पूरी नहीं की तो फिर इस सूरत में खावंद को महरे मिसल देना पड़ेगा, क्योंकि औरत कम महर पर इसलिए राजी हुई थी कि साथ एक और फायदा नजर आ रहा था। मालूम हुआ जब फायदा फौत होगा तो फिर इसकी रजामंदी 1000 दिरहम पर नहीं है, लिहाजा इस सूरत में फिर खावंद को पूरा महरे मिसल ही देना पड़ेगा। कहते हैं वईजा तजव्वजहा अला अल्फिन, अगर किसी शख्स ने निकाह किया किसी औरत से अला अल्फिन 1000 दिरहम पर, अला अल्ला युखरिजहा मिनल बलदती इस शर्त पर कि खावंद उस औरत को नहीं निकालेगा इस शहर से, औ अला अल्ला यतजव्वज अलैहा उखरा या इस शर्त पर कि खावंद इस पर किसी और औरत से निकाह नहीं करेगा, फइन वफा बिशर्ति फलहल मुसम्मा तो अगर खावंद ने शर्त पूरी की, फलहल मुसम्मा तो औरत के लिए मुकर्ररा महर ही होगा यानी वह 1000 दिरहम ही उसे मिलेंगे, लिअन्नहु सलुहा महरन इसलिए क्योंकि वो महर बनने की सलाहियत रखते हैं। भाई बाज़ औकात ऐसी चीज महर मुकर्रर की जाती है वो महर बनने की सलाहियत ही नहीं रखती, जैसे शराब और खिंजीर, लेकिन ये जो 1000 हैं ये तो महर बनने की सलाहियत रखते हैं और नीज इस पर औरत राजी भी हो चुकी है, तो लिहाजा यही 1000 दिरहम महर देना पड़ेगा। ये कब है? जब खावन शर्त पूरी करे। तो कहते हैं फइन वफा बिशर्ति फलहल मुसम्मा, अगर खावंद ने वो शर्त पूरी की तो औरत के लिए मुकर्ररा महर यानी 1000 दिरहम ही होंगे, लिअन्नहु सलह महरन इसलिए क्योंकि ये 1000 दिरहम महर बनने की सलाहियत रखते हैं, वक़द तम्मा रिज़ाहा बिही और तहकीक इस पर औरत की रजामंदी भी हो चुकी है, इस पर औरत की रजामंदी भी हो चुकी है, वह इन तजव्वजा अलैहा उखरा और अगर खावन ने इस पर दूसरी औरत से निकाह कर लिया, और अखराजहा या इस औरत को उस शहर से निकाला यानी शर्त पूरी नहीं की, फलहा महरु मिसलिहा तो फिर इस सूरत में औरत के लिए उसका महरे मिसल होगा। कहते हैं लिअन्नहु सम्मा इसलिए क्योंकि खावंद ने जिक्र किया था मा ऐसी चीज को, लहा फीही नफ़ुन जिसमें उस औरत का नफा था। खावंद ने निकाह में एक ऐसी शर्त जिक्र की थी जिसमें औरत का नफा था, औरत का महर मिसल तो ज्यादा है लेकिन ये मालूम हुआ ये जो थोड़े पर राजी हुई है वो इसी फायदे की वजह से राजी हुई है। तो कहते हैं लिअन्नहु सम्मा मा लहा फीही नफ़ुन इसलिए क्योंकि खावंद ने ऐसी चीज मुकरर की थी जिसमें औरत का नफा था, फइंदा फवातिही यनअदिमु रिज़ाहा बिल अल्फी तो जब वो नफा फौत हो गया यानी जब वो नफा बाकी न रहा तो यनअदिमु रिज़ाहा बिल अल्फी तो 1000 दिरहम पर उसकी जो रजामंदी थी वो भी मादूम हो गई, वो भी मालूम हुआ अब ये 1000 पर राजी नहीं होगी। सूरत में फयुक मालूम महरू मिसलिहा तो उस औरत के लिए पूरा कर दिया जाएगा उसके महरे मिसल को, कमाफी तस्मियतिल करामती वल हदीयती माल अल्फी, ये इसी तरह है जैसे करामत या हदीये को जिक्र किया जाए हजार के साथ। मसलन खावन ने बीवी से कहा कि मैं तुम्हें 1000 दिरहम महर के तौर पर दूंगा और तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ रखूंगा। अब देखो, हालांकि औरत का महर मिसल तो ज्यादा है, लेकिन खावन महर मिसल से कम मकदार जिक्र कर रहा है कि मैं तुम्हें 1000 दिरहम महर दूंगा और तुम्हें बड़े इज्जत के साथ रखूंगा। या खावन कहता है कि 1000 दिरहम तुम्हारा महर है और इसके अलावा भी मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। तो देखो, तोहफा भी साथ जिक्र कर दिया या इज्जत को भी साथ जिक्र कर दिया, और औरत फिर इस सूरत में 1000 पर राजी हो गई। तो मालूम हुआ यह 1000 पर यानी कम पर क्यों राजी हुई है, अपने इस नफे की वजह से राजी हुई है। तो यहां पर भी खावन ने अगर उसको इज्जत से रखा और या इसी तरह अगर तोहफा जिक्र किया था, उसको तोहफा वगैरह कोई दिया, तो फिर इस सूरत में तो औरत को 1000 ही मिलेगा, वरना फिर औरत को महरे मिसल देना पड़ेगा, तो वो जितना भी बनता हो। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं कमाफी तस्मियतिल करामती, जैसे कि करामत यानी इज्जत के जिक्र करने में, वलहदीयति और तोहफे के जिक्र करने में, माल अल्फी 1000 के साथ, यानी जैसे उसमें मसला था, यहां इन शर्तों के अंदर भी उसी तरह मसला होगा। आगे देखिए, वलव तज़व्वजहा अला अल्फिन इन अकाम बिहा व अला अल्फैन इन अखरजहा। ये तवज्जो से सुनो भाई, ये जरा मुश्किल मसला है। सूरत मसला ये कि औरत ने दो मकदारें अलग अलग जिक्र कर दी। औरत ने कहा कि अगर तुम मुझे इसी शहर में रखोगे तो महर 1000 दिरहम होगा, और अगर तुम मुझे इस शहर से किसी दूसरे शहर लेकर जाओगे तो फिर महर 2000 होगा। तो अब देखो, बाकायदा दो मकदारें अलग अलग जिक्र कर दी हैं। तो याद रखो, इस सूरत में इमाम साहेब और साहिबैन का भी इख्तिलाफ है, और इसी तरह इमाम जुफर रहमतुल्लाह भी इस मसले में इख्तिलाफ करते हैं। इमाम साहेब फरमाते हैं, इमाम साहब फरमाते हैं, अगर इस शख्स ने शर्त को पूरा किया यानी औरत को उसी शहर में रखा तो 1000 दिरहम देने पड़ेंगे जो पहले मुकर्रर किए थे, और अगर इस शहर से दूसरी जगह मुंतकिल करता है तो फिर 2000 नहीं देगा बल्कि महरे मिसल देना पड़ेगा। अलबत्ता वो महरे मिसल 1000 से कम नहीं होना चाहिए और 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी। बात समझ में आ गई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं दोनों शर्तें सही हैं, तो जिस पर वो अमल करेगा वही महर आ जाएगा। अगर उसने इसी शहर में इसको रखा तो 1000 दिरहम महर होगा, और अगर शहर से दूसरी जगह मुंतकिल किया तो 2000 महर होगा। जबकि इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं कि दोनों शर्तें फासिद हैं और औरत को महरे मिसल ही मिलेगा। औरत को महरे मिसल मिलेगा, लेकिन यह महरे मिसल 1000 से कम नहीं होना चाहिए और 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इमाम साहब क्या फरमाते हैं, शर्त क्या जिक्र हुई, अगर मुझे इस शहर में रखा तो 1000 दिरहम, दूसरे शहर मुंतकिल किया तो 2000 दिरहम। इमाम साहब फरमाते हैं कि पहली शर्त जो है वह मुंजिज है और दूसरी शर्त मुअल्लक है। अनजाजा यून जिजो इंजाज का माना है किसी चीज को पूरा करना, उसको पाए तकमील तक पहुंचाना, यानी यू को वाके कर देना। क्या माना है वाके? तो इमाम साहब फरमाते हैं जो पहली शर्त जिक्र की वो वाके हो गई, वो मुअल्लक नहीं है बल्कि वाके हो गई। औरत ने क्या कहा, अगर तुमने मुझे इसी शहर में रखा तो महार 1000 दिरहम। इमाम साहब फरमाते हैं जिस वक्त ये पहली शर्त जिक्र हुई अभी दूसरी जिक्र ही नहीं है, लिहाजा ये वाकई हो गई, महार 1000 हो गया। जी। महार 1000 हो गया इस औरत का। और फिर जब औरत ने दूसरी मकदार जिक्र की, और अगर तुमने मुझे इस शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया तो 2000 महार होगा, तो वह दूसरी शर्त अब मुअल्लक हो गई। तो अब इस औरत का महर 1000 है क्योंकि पहली शर्त वाकई हो चुकी है। जी। महर 1000 हो गया, क्योंकि जिस वक्त 1000 जिक्र किया था अभी 2000 का जिक्र ही नहीं हुआ था, सिर्फ एक ही तस्मिया है, जब एक ही तस्मिया है तो वही महर बन गया। अब औरत 1000 दिरहम इसका महर हो चुका है, खावंद शर्त पूरी करता है तो 1000 देना पड़ेगा, लेकिन दूसरी शर्त मुअल्लक है, तो खावंद ने अगर दूसरे शहर मुंतकिल किया तो दूसरी शर्त पूरी हो गई और 2000 भी आ गया। 1000 पहले से मौजूद है और 2000 भी आ गया, तो दो तस्मिया हुए, तो तस्मिया मजहूल हो गया, दो चीजें आ गईं। एक होता तो मुतायन होता, लेकिन दो हो गए तो दो आ गए तो जहालत आ गई, तो तस्मिया में जहालत आ गई, यानी फसाद और खराबी आ गई। और जब तस्मिया के अंदर फसाद और खराबी आ जाए तो फिर महरे मिसल के जरिए फैसला किया जाता है, चुनांचे इस औरत को महरे मिसल मिलेगा अगर वो दूसरे शहर लेकर जाता है। लेकिन फिर इमाम साहब फरमाते हैं ये महरे मिसल 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1000 से कम नहीं होना चाहिए। वजह यह है, फर्ज करो महरे मिसल 1000 से बेशक कम हो, लेकिन फिर भी खावंद कम अज कम कितने पर राजी हो चुका है? 1000 पर। कम अज कम कितना? 1000। और अगर शर्त पूरी ना की तो 2000। तो अगरचे इसका महरे मिसल 1000 से भी कम है, लेकिन खावंद खुद एतराफ कर चुका है कि मैं 1000 कम अज कम जरूर दूंगा, 1000 कम अज कम। तो लिहाजा महरे मिसल अगर इसका 1000 से कम हुआ फिर भी 1000 ही देंगे, क्योंकि जायद का खावंद खुद इकरार कर चुका है, खुद उसका एतराफ कर चुका है, उसको तस्लीम कर चुका है। और नीज महरे मिसल अगर 2000 से ज्यादा हुआ तो जायद फिर औरत को नहीं मिलेगा, क्योंकि औरत ज्यादा से ज्यादा औरत ने कितना कहा है? 2000 कहा है। मालूम हुआ 2000 से जायद वो खुद माफ कर चुकी है, 2000 से जायद जो है वो खुद वो उसने इसमें कमी कर दी है। बात समझ में आ गई? तो लिहाजा ये 1000 और 2000 के दरमियान हो महरे मिसल तो वो दिलाया जाएगा, और अगर महरे मिसल 1000 से कम है तो फिर 1000 ही देना पड़ेगा, क्योंकि खावंद ने इस मकदार पर खुद अपनी रजामंदी का इजहार किया था कि 1000 तो मैं जरूर दूंगा भाई। और अगर 2000 से जायद है महरे मिसल तो औरत को 2000 ही मिलेंगे, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा उसने 2000 जिक्र किए हैं, मालूम हुआ वो जो जायद है उसमें उसने खुद कमी कर दी है। बात समझ में आ गई? तो इमाम साहब के नजदीक पहली शर्त वाकई हो चुकी है, महर कितना हो चुका? 1000। लिहाजा शर्त पूरी की तो 1000 ही मिलेगा, लेकिन अगर शर्त पूरी नहीं की, शर्त तोड़ दी, दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया, तो अब वो जो मुअल्लक शर्त थी वो भी आ गई। जब वो आ गई तो तस्मिया एक रहा या दो बन गए? दो। तो तस्मिया में जहालत आ गई, तस्मिया में फसाद आ गया, और जब तस्मिया में फसाद आ जाए तो फिर फैसला किसके जरिए किया जाता है? महरे मिसल के जरिए। लिहाजा महरे मिसल आ जाएगा। तो कहते हैं वला तज़व्वजह अला अल्फिन, और अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया अला अल्फिन इन अकामा बिहा, 1000 की शर्त पर, अगर खावन ने उसको उसी शहर में ठहराया, उसी शहर में उसकी रिहाइश रखी, वह अला अल्फैन इन अखराजहा, और 2000 की शर्त पर अगर खावंद ने उसको उस शहर से निकाला, फइन अकामा बिहा फलहल अल्फू, तो इमाम साहब फरमाते हैं अगर खावंद ने उसको उसी शहर में ठहराया, फलहल अल्फू, तो औरत को 1000 मिलेगा, क्योंकि 1000 महर तय हो चुका है। दूसरी शर्त अभी मुअल्लक है। दूसरी क्या? अगर शहर, अगर मुझे इस शहर से निकाला तो फिर 2000 होंगे। तो अभी जब तक उसने निकाला नहीं, दूसरी शर्त जो मुअल्लक है वो पूरी नहीं, तो वो अभी 2000 वाला तस्मिया आया ही नहीं। फिर जब निकालेगा तो वो 2000 वाला तस्मिया भी आ जाएगा, और ये 1000 पहले वाला तस्मिया भी है, तो अब तस्मिया में फसाद आ गया, जहालत आ गई। तो कहते हैं फई इन अकाम अबीहा, अगर खावंद ने उसको उस शहर में ठहराया, फलहल अल्फू, तो उस औरत के लिए 1000 होगा, वह इन अखराजहा, और अगर उसको बाहर उस शहर से निकाला, फलहा महरुल मिसली, तो उस औरत के लिए महरे मिसल होगा, ला युजादु अला अल्फैनी वला युनकसु अनिल अल्फी, ना तो उस महरे मिसल को 2000 पर बढ़ाया जाएगा, वला युनकसु अनिल अल्फी, और ना 1000 से कम किया जाएगा, यानी कम अज कम 1000 जरूर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा 2000 ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं। वहादा इंद अबी हनीफा रहिमहुल्ला, ये इमाम साहब के नजदीक है। तो इमाम साहब के नजदीक पहली शर्त हुई मुंजिज और दूसरी शर्त हुई मुअल्लक। वकाला और साहिबेन फरमाते हैं अशर्तानी जमीअन जाइजानी कि दोनों शर्तें जायज हैं। हत्ता कान लहल अल्फ इन अकामा बिहा यहां तक कि औरत के लिए 1000 दिरहम होंगे इन अकामा बिहा अगर खावन ने उसको ठहराया यानी उसी शहर में। वल अल्फानी इन अखराजहा और औरत के लिए 2000 होंगे अगर खावन ने उसको उस शहर से निकाला। साहिबेन फरमाते हैं दोनों शर्तें मुअल्लक हैं। इमाम साहब तो फरमाते थे पहली शर्त मुंजिज है, वाकई हो गई, पूरी हो गई, 1000 महर बन गया, क्योंकि अभी 2000 का जिक्र ही नहीं हुआ तो वो जो पहले जिक्र किया वो आ चुका, वो आ गया। तो जबकि साहिबैन फरमाते हैं दोनों शर्तें मुअल्लक हैं, वो जिस शर्त को पूरा करेगा वही वाला महर आ जाएगा। आगे देखिए वकाल जुफर रहमहुल्ला और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं अशर्तानी जमीअन फासिदानी के दोनों शर्तें फासिद हैं। इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब माल के साथ कोई और शर्त जिक्र की जाए तो महर वो माल होता है, शर्त को वैसे तरगीब के तौर पर जिक्र किया जाता है। तो असल क्या है? माल। और शर्त जो जिक्र है वो सिर्फ किस लिए है? तरगीब के तौर पर। तो यहां पर जब दोनों शर्तें जिक्र की तो ये दोनों शर्तें तरगीब के तौर पर हैं, गोया दो तस्मियां जिक्र हो रहे हैं, 1000 होगा या 2000 होगा, और शर्तें सिर्फ तरगीब के लिए हैं। तो इब्तिदा से ही तस्मिया के अंदर जहालत आ गई क्योंकि दो तस्मिया हो गए, तो जब तस्मिया के अंदर जहालत आ गई तो अब क्या देंगे? महरे मिसल। लेकिन वो भी फरमाते हैं कि महरे मिसल 1000 से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि कम अज कम 1000 देने पर तो खुद खावंद राजी हो चुका है, और 2000 से जायद नहीं होना चाहिए महरे मिसल क्योंकि जायद में तो औरत ने खुद ही कमी कर दी है जब वो ज्यादा से ज्यादा 2000 पर राजी हो रही है। वकाल जुफर रहमहुल्ला और इमाम जुफर रहमहुल्ला फरमाते हैं अशर्तानी जमीअन फासिदानी के दोनों शर्तें जो हैं वो फासिद हैं। वयकूनु लहा महरुम मिसलिहा और उस औरत के लिए महरे मिसल होगा। ला युनकसु मिन अल्फिन वला युजादु अला अल्फैनी और वो महरे मिसल 1000 से कम नहीं किया जाएगा और 2000 पर ज्यादा नहीं किया जाएगा। व असलुल मसअलति फिल इजाराती और असले मसला इजारात में है, यानी मसले की दलील कहां जिक्र है? किताबुल इजारात में। यहां साहिब हिदाया ने दलील जिक्र नहीं की, मैंने तफसील बयान कर दी, बात समझ में आ गई, मैंने तफसील बयान कर दी, लेकिन साहिब हिदाया सिर्फ हवाला दे रहे हैं। कहते हैं वह असलुल मसअलति फिल इजाराती और असले मसला यानी मसला की जो दलील है फिल इजाराती वो किताबुल इजारात में है। फी कौलिही मातिन के इस कौल में इन खितहु यौम फलक दिरहमुन व इन खितहु गदन फलक निसफु दिरहमिन। खाता यखीतु के माने हैं सीना, दर्जी का कपड़े वगैरह सीना। तो मसलन एक शख्स एक दर्जी के पास कपड़े ले गया और उसको कहता है अगर तुमने ये कपड़े आज सिए तो मैं तुम्हें 1 दिरहम दूंगा, और अगर तुमने ये कपड़े कल सिए तो फिर मैं तुम्हें 0.5 दिरहम दूंगा। देखो ना, जो अर्जेंट सलाई होगी वो तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा होगी, तो अगर आज तुमने सिया तो मैं तुम्हें 1 दिरहम दूंगा, और अगर तुमने कल सिया यानी ताखीर के साथ फिर तुम्हें मैं 0.5 दिरहम दूंगा। तो इस मसले के अंदर याद रखो हमारे तीनों आइमा इसी तरह इख्तिलाफ करते हैं, इमाम साहेब और साहिबैन और इमाम जुफर इसी तरह इख्तिलाफ करते हैं। इमाम जुफर फरमाते हैं दोनों शर्तें फासिद, और इमाम साहेब फरमाते हैं पहली शर्त वाकई है दूसरी मुअल्लक है, और साहिबैन फरमाते हैं कि दोनों शर्तें जायज हैं, दोनों शर्तें मुअल्लक हैं, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह असलुल मसअलति फिल इजाराती और असले मसला जो है किताबुल इजारात के अंदर है। फी कौलिही मातिन के इस कौल में इन खितहुल यौमा अगर तूने इस कपड़े को आज सिया फलक दिरहमुन तो तेरे लिए 1 दिरहम है। वह इन खितहु गदन और अगर तूने इसको कल सिया फलक निसफ दिरहमिन तो तेरे लिए 0.5 दिरहम है। वह सनुबयिनुहा फीही इंशा अल्लाह और अन करीब हम इसको बयान करेंगे उस किताबुल इजारात में इंशा अल्लाह। तो साहिब हिदाया इसको किताबुल इजारात में बयान फरमाएंगे जो हिदाया की जिल्दे सालिस में आती है। भाई मैंने यहीं तफसील बयान कर दी, बात समझ में आ गई। आगे देखिए वलौ तज़व्वजहा अला हादल अब्दि औ अला हादल अब्दि फ़इदा अहदुहुमा औकसु वल आखरु अरफ़ु फइनका न महरुम मिसलिहा अकल मिन औकसी ही मा फलहल औकसु व इनका न अक्सर मिन अरफाई ही मा फलहल अरफाऊ व इनका न बैन हुमा फलहा महरुम मिसलिहा। भाई सूरत मसला ये, एक शख्स जो है एक औरत से निकाह करता है कि मैं तुमसे निकाह करता हूं और महर के तौर पर ये वाला गुलाम दूंगा या ये वाला गुलाम दूंगा, दो गुलामों की तरफ अलग अलग इशारा किया। ये गुलाम नहीं, कोई भी चीज ऐसी हो सकती है, बात समझ में आ गई। तो खावंद ने औरत से निकाह किया एक गैर मुतायन गुलाम पर, और उन गुलामों में जब देखा गया तो उनमें एक गुलाम अदना है, मसलन उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख है, और दूसरा गुलाम आला है, मसलन उसकी कीमत 10 लाख है। तो अब औरत को क्या मिलेगा भाई? तो इमाम साहब के नजदीक जाब्ता वही है कि महरे मिसल के जरिए फैसला किया जाएगा। तो लिहाजा औरत को महरे मिसल मिलेगा, लेकिन यह महरे मिसल उसी तरह यह अदना गुलाम से कम नहीं होगा और आला गुलाम से ज्यादा नहीं। अगर इन दोनों के बीच में है, मसलन महरे मिसल औरत का 7 लाख है तो ये 7 लाख औरत को मिलेगा, लेकिन अगर महरे मिसल औरत का कम है और अदना से भी कम है, वो 4 लाख है, तो फिर 5 लाख औरत को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो महरे मिसल से जायद है कम अज कम इतने का खावंद खुद एतराफ कर चुका है कि इतना तो मैं जरूर दूंगा। जब खावंद ने कहा मैं इन दो गुलामों में से एक दूंगा, तो मालूम हुआ जो कम वाला गुलाम है कम अज कम उतना तो मैं जरूर दूंगा, ये खावंद खुद एतराफ कर चुका है। तो लिहाजा महरे मिसल बेशक अदना गुलाम से कम हो, फिर भी अदना गुलाम जरूर मिलेगा औरत को। और अगर महरे मिसल आला गुलाम से ऊपर हुआ तो ऊपर ज्यादती औरत को नहीं मिलेगी, क्योंकि वो खुद उसमें कमी कर चुकी है, वो ज्यादा से ज्यादा इसी गुलाम पर राजी हो चुकी है भाई। तो कहते हैं वलौ तज़व्वजहा अला हादल अब्दी औ अला हादल अब्दी, और अगर किसी शख्स ने किसी औरत से निकाह किया इस गुलाम पर या इस गुलाम पर, फइदा अहदहुमा औकसु, तो उन दोनों में से अचानक एक जो था वो तो नाकिस था, औकस का माना अदना और नाकिस, वल आखरु अरफाउ, और दूसरा जो है वो आला था, तो औकस का तर्जमा कर लें अदना, अरफा का तर्जमा कर लें आला, तो दोनों में से एक अदना था और दूसरा आला था। फइन काना महरु मिसलिहा अकल्ल मिन औकसिहिमा, तो अगर इस औरत का महरे मिसल जो है इन दोनों गुलामों में से जो अदना है उससे भी कम है, फलहल औकसु, तो औरत को वो अदना गुलाम ही मिलेगा। वह इनकाना अक्सर मिन अरफाईहिमा, और अगर इस औरत का महरे मिसल वो आला गुलाम इन दोनों गुलामों में से जो आला है उससे भी ज्यादा है, फलहल अरफाउ, तो औरत को आला गुलाम ही मिलेगा, इससे जायद नहीं मिलेगा। वह इनकाना बैनहुमा, और अगर औरत का महरे मिसल इन दोनों के बीच में है, फलहा महरु मिसलिहा, तो औरत के लिए उसका महरे मिसल होगा। वहादा इंद अबी हनीफा तरहिमहुल्ला, ये इमाम साहिब के नजदीक है। वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं, कहते हैं लहल औ कसुफी दालिका कुल्ली ही, साहिबैन फरमाते हैं औरत के लिए अदना गुलाम ही होगा, फी दालिका कुल्ली ही, इस सारे में, इन तमाम सूरतों में, चाहे औरत का महरे मिसल औकस से कम हो या अरफा से ज्यादा हो या चाहे दोनों के बीच में हो, बहरहाल औरत का जो भी महरे मिसल हो, लेकिन औरत को औकस ही मिलेगा। वजह यह, वो फरमाते हैं कि जब दो अलग अलग गुलाम खावन ने जिक्र कर दिए और एक कम कीमत वाला है और एक ज्यादा कीमत वाला है, तो मालूम हुआ वो कम कीमत वाला तो यकीनी है, कम अज कम वो तो जरूर देना पड़ेगा, और जायद में क्या आ गया, शक आ गया कि ये भी ये होना चाहिए या नहीं। भाई एक गुलाम 5 लाख का है और दूसरा 10 लाख का, तो उस 10 लाख में भी तो 5 लाख आ गए, तो मालूम हुआ कम से कम कितना है, 5 लाख तो महर यकीनी है और ऊपर वाला यकीनी नहीं, तो जो यकीनी है उसी पर महमूल करेंगे, और तीनों सूरतों में औरत को वो कम गुलाम ही मिलेगा। तो कहते हैं वकाला, और साहिबैन फरमाते हैं लहल औ कसुफी दालिका कुल्ली ही, कि उस औरत के लिए वो अदना गुलाम ही होगा इस सारे में, यानी इन तमाम सूरतों में। फइन तल्लकहा क़ब्ल दुखूली बिहा, और अगर याद रखो, अगर खावंद ने इसी औरत को सोहबत से पहले तलाक दे दी तो फिर हमारे तीनों अइमा फरमाते हैं कि इसको निस्फ औकस ही दिया जाएगा, निस्फ यानी अदना गुलाम का निसफ ही मिलेगा, आला का निसफ नहीं देंगे, आला का निसफ नहीं देंगे बल्कि अदना का निसफ ही औरत को मिलेगा हमारे तीनों अइमा के नजदीक। तो कहते हैं फइन तल्लकहा कब्ल दुखूली बिहा, और अगर खावन ने इस औरत को तलाक दे दी इसके साथ सोहबत करने से पहले, फलहा निसफुल औकसी, तो औरत के लिए अदना गुलाम का निसफ होगा, फी दालिका कुल्लिही इस सारे में, बिल इजमाई ऐ बिल इत्तिफाकी, यानी हमारे तीनों अइम्मा का इसमें इत्तेफाक है। तो यहां इजमा से वो तमाम मुज्तहिदीन का इजमा मुराद नहीं है बल्कि हमारे फुकहा हमारे अइम्मा का इजमा और इत्तेफाक मुराद है। बात समझ में आ गई। अब दलील जिक्र करेंगे हर एक की। कहते हैं लहुमा, साहिबैन क्या फरमाते थे कि तमाम सूरतों में औकस ही मिलेगा औरत को। अब उनकी दलील जिक्र करने लगे हैं। याद रखो, एक होता है मुसम्मा, वो महर जो मुकरर किया जाए, और एक होता है महरे मिसल। इमाम साहिब का मजहब यह है कि निकाह में असल महरे मिसल है, निकाह में असल महरे मिसल है, और जो मुसम्मा आता है वो इसलिए आता है कि वो दोनों ने आपस में खुद जिक्र कर दिया, उस पर राजी हो गए तो वो मुसम्मा आ जाता है, वरना हकीकत में क्या आना चाहिए था, महरे मिसल ही आना चाहिए था। हत्ता कि अगर ये जिक्र न करते तब भी महरे मिसल नहीं आना था। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि असल मुसम्मा है, तो निकाह में मुसम्मा ही आता है, जब मुसम्मा में कोई खराबी आ जाए वो न आ सके तो फिर महरे मिसल आया करता है। तो साहिबैन के नजदीक असल क्या है, मुसम्मा। मुसम्मा में फसाद आ जाए, खराबी आ जाए, फिर महरे मिसल आता है, वरना मुसम्मा ही आता है। तो मुसम्मा असल है और इमाम साहब के नजदीक महरे मिसल असल है, लेकिन मुसम्मा जब उन्होंने आपस में मिलकर एक तय कर लिया है तो अब मजबूरी की वजह से मुसम्मा आ जाएगा, क्योंकि वो खुद आपस में इस पर राजी हो चुके हैं भाई। तो लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल मसीर इला महरिल मिसली लिताअदुरी इजाबिल मुसम्मा, कि महरे मिसल की तरफ जो रुजू किया जाएगा, लिताअजुरी इजाबिल मुसम्मा, वो इसलिए है कि मुसम्मा को वाजिब करना मुताअज़्ज़िर हो गया। साहिबैन फरमाते हैं कि महरे मिसल की तरफ कब रुजू किया जाता है, जब मुसम्मा मुताअज़्ज़िर हो जाए, मुसम्मा को वाजिब न किया जा सके। तो लहुमा साहिबैन की दलील यह है कि अन्नल मसीर इला महरिल मिसली, कि महरे मिसल की तरफ जो रुजू किया जाता है, लिताअज़्ज़ुरी इजाबिल मुसम्मा, वो जब मुसम्मा का वाजिब करना मुताअज़्ज़िर हो जाए मुमकिन न रहे, वकद अमकन इजाबुल औकसी, और तहकीक यहां पर तो औकस को वाजिब करना मुमकिन है, क्योंकि उसने दो गुलाम जिक्र किए, एक 5 लाख वाला है और एक 10 लाख वाला है, तो मालूम हुआ 5 लाख तो यकीनी है, क्योंकि ये 5 लाख उस आला में भी आ रहे हैं, अलबत्ता उसमें कुछ जायद है। कहते हैं वकद अमकन इजाबुल औकसी, और तहकीक यहां पर जो कम वाला गुलाम है उसको तो वाजिब करना मुमकिन है, इदिल अकल्लु मुतयक्किनुन, इसलिए क्योंकि जो कम है वो तो यकीनी है, वसारकल खुलई वल इताक आला मालिन, और कहते हैं ये इसी तरह हो गया जैसे खुला और इताक आला माल हो। खुला पहले बयान में कर चुका हूं कि औरत खावन से जुदाई इख्तियार करती है माल देकर, और इसके अंदर तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं किया जाता, खुला का लफ्ज जिक्र किया जाता है। औरत कहती है कि मुझसे खुला कर लो, 1000 दिरहम मैं तुम्हें दे दूंगी, और खावन कबूल कर लेता है, तो जैसे ही खावन कबूल करेगा मियां बीवी में जुदाई आ गई और अब औरत पर वो माल लाजिम हो गया। तो खुला के अंदर तलाक का लफ्ज तो जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन चूंकि ये खावन की रजामंदी से ये जुदाई आती है और खावन तो तलाक देने का अहल है, लिहाजा ये तलाक के हुक्म में है, तो ये तलाक बाइन शुमार होती है। और इसी तरह एताक भाई, आका का अपने किस गुलाम या बांदी को आजाद करना, आका गुलाम या बांदी को वैसे भी आजाद कर सकता है और माल लेकर भी आजाद कर सकता है। मसलन आका अपने गुलाम से कहता है कि तुम मुझे 1000 दिरहम दे दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, या आका उसको कहता है कि तुम मेरी तरफ से आजाद हो 1000 दिरहम की शर्त पर, और गुलाम कबूल कर लेता है तो कबूल करते ही गुलाम फौरन आजाद हो गया, लेकिन अब उसके जिम्मे 1000 दिरहम देना वाजिब है। अब वो जाएगा कमा कर लाएगा, आका के हवाले करेगा। तो बात चल रही थी एक निकाह के अंदर दो गुलामों को जिक्र किया गया, तायीन नहीं की गई ये वाला गुलाम दूंगा या ये वाला गुलाम दूंगा। तो इस सूरत के अंदर अब साहिबैन फरमाते हैं कि अवकस वाला गुलाम यकीनी है वही दिया जाएगा, और वो इसको कियास करते हैं खुला और एताक आला माल पर। मसलन एक औरत अपने खावन से खुला करती है और इसी तरह दो चीजें जिक्र करती है कि मुझसे खुला कर लो, ये वाला गुलाम ले लो या ये वाला गुलाम। बात समझ में आ गई, तो खावंद इसको कबूल कर लेता है। तो इसके अंदर याद रखो बिल इत्तेफाक औकस ही आता है, कम कीमत वाला ही आएगा, क्योंकि वो तो यकीनी है भाई, औरत ने गुलाम की तायीन नहीं की थी, तो कम वाला तो यकीनी है और जायद वाला यकीनी नहीं, लिहाजा कम वाला आ जाएगा। या जैसे एताक आला माल है आका और गुलाम के दरमियान, गुलाम अपने आका से कहता है कि मैं आपको ये वाला या ये वाला गुलाम दिला दूंगा, आप मुझे आजादी दे दें, आका इसको कबूल कर लेता है। तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक जो कम कीमत वाला गुलाम है वो यकीनी है तो वो ही देना पड़ेगा, तो ये गुलाम आजाद हो जाएगा और ये जाकर कमाई करेगा और उस गुलाम की कीमत लाकर दे देगा। बात समझ में आ गई। तो साहिबैन फरमाते हैं जैसे खुला के अंदर इस तरह की जहालत आ जाए तो कम वाला यकीनी होता है, या एताक आला माल में जब इस तरह दो माल जिक्र कर दिए जाएं तो कम वाला यकीनी होता है। तो यहां पर भी कम वाला अदना गुलाम यकीनी है, लिहाजा वही वाजिब होगा। ये माना है, वो फरमाते हैं वसारकल खुलई वल एताक आला मालिन, और ये इसी तरह हो गया जैसे खुला हो और एताक आला माल हो। ये साहिबैन की दलील थी। वली अबी हनीफा रहिमहुल्लाह, अब इमाम साहिब की दलील आई। इमाम साहिब का जाब्ता क्या है, निकाह में मुसम्मा असल है या महरे मिसल असल है? महरे मिसल असल है। तो कहते हैं वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह, इमाम साहब की दलील यह है कि अन्नल मूजब अल असली या महरुल मिसली, कि असले मूजब जो है वो महरे मिसल है, यानी असल मुक्तजा क्या है निकाह का, क्या आना चाहिए, महरे मिसल। तो मूजब का माना मुक्तजा, मुक्तजा यानी उसका हुक्म जो है। अन्नल मूजब अल असली या के निकाह का मूजब असली यानी जिसका निकाह असल में तकाजा करता है वो महरुल मिसली, वो महरे मिसल है। इद हुवल आदलू, क्योंकि वो ज्यादा बराबर है या वो ज्यादा इंसाफ वाला है। आदल, आदल का माना इंसाफ करना भी और अदल का माना बराबरी भी, तो जो भी आप तर्जमा कर लें। इद हुवल आदल इसलिए क्योंकि महरे मिसल ज्यादा इंसाफ वाला है, ये ज्यादा इंसाफ वाला है। भाई मुसम्मा, मुसम्मा तो थोड़ा भी मुकरर किया जा सकता है, ज्यादा भी मुकरर किया जा सकता है, लेकिन औरत के लिए ज्यादा इंसाफ वाली बात क्या है, क्या आना चाहिए, महरे मिसल, यानी इसके खानदान में इस जैसी औरतों को जो महर होता है, मालूम हुआ इस औरत का यह हक बनता है, यह महर होना चाहिए। तो ज्यादा इंसाफ किस में है कि औरत के लिए क्या आए, मुसम्मा आए या महरे मिसल, महरे मिसल आना चाहिए भाई। या इस आदल का तर्जमा कर लें ज्यादा बराबर के, क्योंकि ये जो महरे मिसल है ये इस औरत के ज्यादा बराबर है। मालूम हुआ इस खानदान की औरतों का जब ये महर होता है तो मालूम हुआ इसकी भी यही कीमत है। कहते हैं इज हुवल आदल इसलिए क्योंकि ये महरे मिसल जो है वो ज्यादा बराबरी वाला है। वल उदूल अनहु इंदा सेहती तस्मियती, और जो महरे मिसल से उदूल किया जाता है, एराज किया जाता है, उसे जो मुंह मोड़ा जाता है, इंदा सेहती तस्मियती, ये उस वक्त होता है जब तस्मिया सही हो जाए, जब तस्मिया सही हो जाए तो उस वक्त महरे मिसल से रुजू किया जाता है। भाई फिर समझो, इमाम साहब के नजदीक निकाह में असल महरे मिसल ही है, लेकिन जब तस्मिया आ जाए तो फिर हमें मजबूरन महरे मिसल को छोड़कर मुसम्मा की तरफ जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? मजबूरी है। वो जो मियां बीवी खुद इस पर राजी हो गए हैं, आना तो महरे मिसल था, लेकिन ये खुद जब एक मुसम्मा पर राजी हो गए हैं तो अब वो ही आ जाएगा। तो कहते हैं वल उदूल अनहु इंदा सेहति तस्मियति, और महरे मिसल से जो उदूल किया जाता है वो तस्मिया के सही होते वक्त होगा कि इन्होंने अपनी मर्जी से मुकरर कर लिया, तो वही फिर आ जाएगा। वकद फसदत, और तस्मिया तो तहकीक यहां फासिद हो चुका है। इमाम साहब के नजदीक असल में महरे मिसल आना चाहिए, और महरे मिसल को तब छोड़ते हैं जब तस्मिया सही हो जाए, लेकिन यहां तो तस्मिया फासिद है क्योंकि खावन ने क्या कहा, ये वाला गुलाम दूंगा या ये वाला, तो देखो तस्मिया तो मजहूल हो गया कौन सा गुलाम है, मुतायन नहीं। तो कहते हैं वकद फसदत, और तस्मिया तो यहां पर फासिद हो चुका है। लिमकानिल जहालती, मकान मस्दर है बमाने वजूद के, कान यकूनु कौनन से मकान क्या है, मस्दर मीमी है, और मैंने बताया साहिब हिदायत ये जगह जगह इस्तेमाल करते हैं। तो लिमकानिल जहालती अली वजूदिल जहालती, तो तस्मिया जो है वो फासिद हो गया। लिमकानिल जहालती, जहालत पाए जाने की वजह से। बिखिलाफिल खुलई वल एताकी, तो इमाम साहब के नजदीक यहां महरे मिसल आएगा, उसी को फैसल बनाएंगे, उसके जरिए फैसला करेंगे। जबकि साहिबैन ने इसको किस पर कयास किया था, खुला और एताक आला माल पर, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं इमाम साहब की तरफ से कि आप इस निकाह को खुला या एताक आला माल पर कयास नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि निकाह के अंदर शरीयत ने एक बदल रखा हुआ है और वो महरे मिसल है। आप जिक्र करें या ना करें, खुद ब खुद महरे मिसल जरूर आ जाता है। अगर आपने कुछ और मुकर्रर किया फिर तो वो आ जाएगा, वरना महरे मिसल खुद ब खुद जरूर आ जाएगा। जबकि खुला और एताक आला माल, उसमें तो शरीयत ने कुछ मुकर्रर नहीं किया। हत्ता कि अगर खावंद अपनी बीवी से कहता है मैं तुम्हारे साथ खुला करता हूं बगैर किसी चीज के, या आका अपने गुलाम को कहता है मैं बगैर किसी चीज के तुम्हें आजाद करता हूं, तो देखो वहां पर शरीयत की तरफ से कोई बदल वगैरह लाजिम नहीं है, वैसे ही खुला सही हो जाएगा। लिहाजा मालूम हुआ आप इस निकाह को खुला पर कयास नहीं कर सकते। निकाह के अंदर एक बदल शरीयत की तरफ से खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन खुला और एताक आला माल में शरीयत की तरफ से कोई बदल मुकर्रर नहीं है भाई। तो कहते हैं बिखिलाफिल खुलई वल एताक, बखिलाफ खुला और एताक, लिअन्नहु ला मूजब लहू फिल बदल, इसलिए क्योंकि इनका कोई मुक्तजा नहीं है बदल में। इनके अंदर ये अकद, ये खुला और एताक आला माल, इनके कोई बदल मुकर्रर नहीं जिसका ये तकाजा करें कि ये वाला बदल आना चाहिए, लेकिन निकाह में उसका मुक्तजा है, वो महरे मिसल का तकाजा करता है भाई। तो कहते हैं लिअन्नहु ला मूजब लहू फिल बदली, इसलिए क्योंकि ये जो खुला और एताक है इनका कोई मुक्तजा नहीं है फिल बदली बदल में। इल्ला अन्ना महरल मिसली, यहां से अब एक एतराज का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। इमाम साहब पर एतराज होता है कि आपके नजदीक निकाह का मूजब असली महरे मिसल है, फिर तो महरे मिसल ही आना चाहिए हर हाल में, चाहे वो अरफा से ज्यादा हो, चाहे वो औकस से कम हो, चाहे वो दोनों के दरमियान में हो, हर सूरत में महरे मिसल ही आना चाहिए। लेकिन आप फरमाते हैं कि महरे मिसल अगर दोनों के बीच हुआ फिर तो महरे मिसल देंगे, और अगर अरफा से ज्यादा हुआ महरे मिसल तो अरफा ही देंगे, और अगर औकस से कम हुआ महरे मिसल तो औकस ही देंगे। तो ये तेरा समझ में आया कि अगर महरे मिसल असल है फिर तो हर हाल में महरे मिसल ही वाजिब होना चाहिए। तो उसका जवाब मैं पहले जिक्र कर चुका कि हां असल मुक्तजा तो महरे मिसल ही है, लेकिन लेकिन अगर महरे मिसल अरफा से आला है तो वो खावन पर लाजिम नहीं आएगा, क्योंकि वो जायद तो खुद औरत उसमें कमी कर चुकी है, ज्यादा से ज्यादा अरफा पर वो खुद राजी हो चुकी है, तो वो जायद गोया उसने खुद उसकी कमी कर दी है। और अगर महरे मिसल औकस से कम हुआ तो भी औकस कम से कम जरूर देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि खावन ने कम से कम औकस देने का एतराफ खुद किया है भाई। तो कहते हैं इल्ला अन्ना महरल मिसली, मगर यह कि महर मिसल जो है इदा काना अक्सरा मिनल अरफाई, जब वो आला गुलाम से अज्यादा है, फल मर अतु रजियत बिल हती, तो औरत राजी हो चुकी है बिल हती कमी में, औरत राजी हो चुकी है खुद कमी पर, भाई उसने खुद इससे ज्यादा मांगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा यही मुकरर हुआ। वह इनकान अन कसम इनल अवकसी, और अगर महरे मिसल जो है वो अदना गुलाम से कम है, फज़ौजु रज़िया बिज़ियादती, तो खावंद खुद इस ज्यादती पर राजी हो चुका है कि कम अज कम ये औकस तो मैं जरूर दूंगा। वल वाजिबु फी तलाकी, अब वो जो दूसरा मसला जिक्र किया था कि सोहबत से पहले इस औरत को अगर तलाक दी गई तो बिल इत्तेफाक हमारे तीनों इमाम फरमाते हैं निसफे औकस ही देंगे। तो इमाम साहब पर इश्काल होता है, अगर महरे मिसल आपने महरे मिसल को फैसल बनाया है, उसके जरिए फैसला किया है, तो जहां महरे मिसल आए वहां सोहबत से पहले अगर औरत को तलाक दी जाए तो क्या आता है? मुता आता है। क्या आता है? मुता। तो यहां भी औरत को मुता देना चाहिए, लेकिन आप भी फरमाते हैं निसफे औकस देना पड़ेगा, मुता नहीं देंगे। तो अब उस एतराज का जवाब दे रहे हैं, तो कहते हैं वल वाजिबु फी तलाक कबलत दुखूली, और तलाक कबलत दुखूल के अंदर जो वाजिब होता है, फी मिसली ही, इस जैसे निकाह में, इस जैसे निकाह में, यानी जिसमें तस्मिया फासिद हो जाए, जिस निकाह में तस्मिया फासिद हो जाए तो क्या आता है? महरे मिसल, और सोहबत से पहले तलाक देगा तो क्या आएगा? मुतहा आएगा। तो वही बयान कर रहे हैं, कहते हैं वल वाजिब फी तलाकी कबलत दुखूली, और सोहबत से पहले तलाक देने के अंदर जो वाजिब होता है, फी मिसली ही, इस जैसे निकाह में, यानी जहां तस्मिया फासिद हो चुका है और महरे मिसल आ चुका है, तो इस जैसे निकाहों में सोहबत से पहले तलाक के अंदर जो वाजिब होता है अल मुतहा, तो वो क्या है? मुतहा है भाई। व निसफुल औकसी यजीदु अलैहा फिल आदती, और ये जो निस्फ औकस है ये जायद होगा उस मुता पर, फिल आदती आदत में, आम तौर पर आदत यही है कि गुलाम जो है उसका निसफ मुता से जायद ही होगा, और खावंद कम अज कम कितना महर देने का एतराफ कर चुका है, औकस यानी अदना तो जरूर दूंगा, तो लिहाजा कम से कम जिसका खावंद ने इकरार किया उसी का निसफ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और निस्फे औकस इसलिए कह रहे हैं, बतला रहे हैं कि निस्फे औकस की बात हमने इसलिए की क्योंकि निस्फे औकस उमूमन मुता से ज्यादा होगा, अगरचे मुता से ज्यादा है लेकिन खावंद खुद एतराफ कर चुका है या नहीं कि कम अज कम मैं औकस तो जरूर दूं, जब उसने कहा ना इन दो गुलामों में से मैं एक दूंगा, तो गोया उसने कह दिया ये जो औकस है कम अज कम ये तो मैं जरूर दूंगा तुम्हें, और फिर सोहबत से पहले तलाक हो तो जो कम से कम था उसी का निसफ आना चाहिए क्योंकि आदतन वो मुता से ज्यादा होता है। लेकिन याद रखो अगर ये निसफ औकस मुता से कम हुआ तो फिर मुता ही देना पड़ेगा, फिर निसफ औकस नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई। तो चूंकि ये निसफ औकस मुता से ज्यादा है और इसका खावंद खुद इकरार कर चुका है, तो लिहाजा इसलिए निसफ औकस हमने वाजिब करार दिया, लेकिन अगर मुता से ज्यादा है तो फिर इस सूरत में मुता ही देना पड़ेगा। तो कहते हैं वह निसफुल औकसी यजीदु अलैहा फिल आदती, और निसफ औकस जो है वो इस मुता पर जायद होता है, फिल आदती आदत में, कि आमतौर पर इसी तरह होता है, फवजब लिअतिराफ ही बिज़्यादती, तो यही इसी औकस का निसफ वाजिब हो जाएगा, लिअतिराफ ही बिज़्यादती, क्योंकि खावंद खुद इस जायद का एतराफ कर चुका है, उसने भी जब दो गुलाम जिक्र किया तो गोया कह दिया कम से कम ये जो नाकिस है ये तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, और जब तलाक दे दी सोहबत से पहले तो इसी का फिर कम अज कम निसफ तो जरूर आएगा। तो ये माना है फवजब लिअतिराफ ही बिज़्यादती, तो यही निसफ औकस वाजिब हो जाएगा अगर चे मुता से जायद है, लिअतिराफ ही बिज़्यादती, क्योंकि खावंद खुद इस ज्यादती का एतराफ कर चुका है। बात समझ में आ गई। आगे देखिए वह इदा तज़व्वजहा अला हैवानिन गैर मौसूफिन सहती तस्मियतु वलहल वसतु मिन्हु वज़्ज़ौजु मुख़य्यरुन इन्शा अअताहा ज़ालिका व इन्शा अअताहा क़ीमतह। भाई गुज़श्ता सबक में भी ये मसला जिक्र हुआ था कि अगर एक शख्स एक औरत से निकाह करता है और कोई हैवान मुकरर कर लेता है, मतलब उसकी जिंस तो बयान कर देता है कि मैं तुम्हें एक गाय दूंगा बतौर महर के। अब गाय तो आला भी हो सकती है, अदना भी हो सकती है, मुतवस्सित भी हो सकती है, तो देखो उस महर में जहालत लाजिम आ रही है। लेकिन मैंने आपको बतलाया था कि निकाह की बुनियाद नरमी पर होती है, निकाह के अंदर असल मकसूद माल नहीं होता, तो इसलिए यह थोड़ी बहुत जहालत भी निकाह में बर्दाश्त कर ली जाएगी और फिर उस आदमी पर मुतवस्सित दर्जे का हैवान लाजिम हो जाएगा, उस खावंद पर मुतवस्सित दर्जे का हैवान लाजिम हो जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में बेअ जो है उसकी बुनियाद तंगी पर है, बेअ के अंदर लोग तंगी करते हैं। देखो बाय और मुश्तरी आपस में बहस करते हैं, बाय की कोशिश होती है ज्यादा पैसों में बेचूं, मुश्तरी की कोशिश होती है कम पैसों में खरीदूं, तो दोनों आपस में बहस मुबाहसा करते हैं, तो बेअ की बुनियाद तंगी पर है। लिहाजा बेअ के अंदर अगर थोड़ी सी भी जहालत आ जाए तो बेअ फासिद है, क्योंकि झगड़ा लाजिम आएगा। मसलन एक आदमी ने दूसरे को कहा, मैंने आपको 1 लाख रुपए में एक गाय फरोख्त कर दी, गाय वहां मौजूद नहीं है, तो अब देखो गाय मजहूल हो गई और अब बाद में झगड़ा आएगा। बाय चाहेगा मैं अदना सी गाय दे दूं और मुश्तरी चाहेगा मुझे आला गाय मिले, तो लिहाजा इस बेअ की वजह से चूंकि झगड़ा आया, लिहाजा बेअ के अंदर थोड़ी सी भी जहालत काबिले बर्दाश्त नहीं, थोड़ी सी भी जहालत आएगी तो बेअ फासिद हो जाएगी। जबकि निकाह जो है उसमें थोड़ी सी जहालत बर्दाश्त कर ली जाएगी, क्योंकि निकाह के अंदर असल मकसूद माल नहीं होता। हां अलबत्ता अगर जहालत फाहिशा हुई, यानी बहुत ज्यादा जहालत हुई, तो फिर इस सूरत में वो तस्मिया ही सही ना रहेगा, फिर महरे मिसल आ जाएगा। मसलन एक आदमी ने एक औरत से निकाह करते हुए कहा, मैं तुम्हें महर के तौर पर एक हैवान दे दूंगा, हैवान की जिंस भी नहीं बतलाई, मैं तुम्हें एक हैवान दे दूंगा, तो अब तो जिंस का ही नहीं पता भाई, हैवान के अंदर तो बकरी भी शामिल हो रही है, हैवान में तो गाय भी शामिल हो रही है, उसमें तो गधा खच्चर घोड़ा ऊंट सब शामिल हो रहे हैं, तो लिहाजा इस सूरत में जहालते फाहिशा आ गई, जहालते फाहिशा आ गई, तो खावंद की कोशिश होगी मैं अदना से अदना हैवान दे दूं, भेड़ बकरी दे दूं, जबकि औरत की ख्वाहिश होगी मुझे आला हैवान यानी ऊंट या घोड़ा मिले, तो लिहाजा इसलिए इस सूरत में जब जहालते फाहिशा हो निकाह के अंदर, तो फिर वो तस्मिया ही फासिद, और जब तस्मिया फासिद हो जाए तो फिर वहां महरे मिसल आ जाया करता है, तो फिर महरे मिसल आएगा। तो हासिल कलाम क्या कि बेअ के अंदर जहालत यसीरा की भी गुंजाइश नहीं, थोड़ी जहालत की भी गुंजाइश नहीं, और निकाह के अंदर जहालत यसीरा की तो गुंजाइश है, जहालत फाहिशा की गुंजाइश नहीं, फिर वहां महरे मिसल आ जाएगा। आप देखिए कहते हैं वह ईदा तज़व्वजहा अला हैवान इन गैर मौसूफिन, अगर उस शख्स ने निकाह किया उस औरत से अला हैवान इन गैर मौसूफिन, ऐसे हैवान पर जिसकी सिफत बयान नहीं की गई कि आला होगा या मुतवसित होगा या रदी होगा, तो सहती तस्मिया तो भी तस्मिया सही है क्योंकि जहालत यसीरा है, वलहल वसतु मिनहू, और उस औरत के लिए उस हैवान का मुतवसित होगा यानी मुतवसित दर्जे का हैवान मिलेगा, वज़ौज मुखय्यरुन, और खावंद को इख्तियार होगा, इंशा आताहा ज़ालिका, चाहे तो उस औरत को वही मुतवसित दर्जे वाला हैवान यानी मुतवसित दर्जे वाली गाय दे दे, वह इंशा आताहा कीमतहू, और चाहे तो खावंद उसको उसकी कीमत दे दे। मुतवसित दर्जे का हैवान आएगा और फिर उस खावंद को इख्तियार है कि वह मुतवसित दर्जे का हैवान भी दे सकता है और उसकी कीमत भी दे सकता है, यानी औरत मजबूर नहीं कर सकती खावंद को कि मुझे मुतवसित गाय ही लाकर देनी पड़ेगी, नहीं, खावंद की मर्जी है मुतवसित गाय लाकर दे दे या उसकी कीमत दे दे। वजह यह कि दोनों असल हैं, एक एतबार से देखा जाए तो कीमत असल है, एक एतबार से देखा जाए तो वो गाय असल है। कीमत इसलिए असल है कि मुतवस्सित का पता ही कीमत से चलता है, मुतवस्सित हैवान का पता ही किससे चलेगा, कीमत से। तो लिहाजा इस एतबार से कीमत ही असल हुई। तो खामंद कीमत भी दे सकता है और मुतवस्सित गाय भी दे सकता है, क्योंकि जिक्र तो गाय का हुआ था भाई। तो यह माना है वज़ौज मुखय्यरुन, और खावंद को इख्तियार होगा, इन शाअ आता ज़ालिका, चाहे तो उस औरत को वही मुतवस्सित हैवान दे दे, व इन शाअ आता कीमतहु, और चाहे तो उस औरत को उस मुतवस्सित हैवान की कीमत दे दे। قال رضي الله تعالى عنه, इस काला से मुरा साहिब हिदाया हैं, वो फरमाते हैं माना हादिहि المسألتي, इस मसले का माना ये है भाई, ऊपर आया था ना, व इन तज़व्वजहा अला हैवानिन गैर मौसूफिन, हैवान है लेकिन मौसूफ नहीं, उसकी सिफत नहीं जिक्र की, इसका क्या माना है मैंने बतला दिया, माना यह है हैवान की जिंस तो जिक्र की लेकिन उसकी सिफत बयान नहीं की कि आला होगा या अदना होगा या मुतवस्सित होगा, यही बयान कर रहे हैं। कहते हैं माना हादिहिल मसअलती, इस मसले का माना यह है कि अन युसम्मा जिंसुल हैवानी, कि हैवान की जिंस को तो जिक्र किया जाए, दून अल वस्फी, लेकिन उसके वसफ को जिक्र न किया जाए। भी अन यतज़व्वजहा अला फरसिन औ हिमारिन, ये बात तस्वीरिया है, सूरत बतला रहे हैं कि किस तरह जिंस जिक्र हो और वसफ जिक्र ना हो। कहते हैं भी आई यह तजव वजहा, बाई सूरत के वो शख्स उस औरत से निकाह करता है, आला फरसिन घोड़े पर, मस सिर्फ घोड़ा जिक्र किया, आला अदना या मुतवसित जिक्र नहीं किया। औ हिमारिन, यह निकाह करता है हिमार यानी गदे पर, यानी सिर्फ गदा जिक्र किया है, आला अदना या मुतवसित को जिक्र नहीं किया। अम्मा इदालम युसम्मल जिंसु, और बाकी वो सूरत के जब जिंस को जिक्र ही न किया जाए, भी अन यतज़व्वजहा अला दाब्बतिन, बाई सूरत के खावंद उस औरत से निकाह करता है, अला दाब्बतिन एक जानवर पर। भाई मैंने बतलाया था कि दाब्बा जो है जमीन पर चलने वाले हर जानदार को कहते हैं, लेकिन अब उर्फ में इससे बारबरदारी और सवारी वाले जानवर यानी घोड़ा गधा और खच्चर मुराद लेते हैं। तो अब देखो दाब्बा से अगर आम जानदार मुराद लें, खावंद कहते हैं मैं तुमसे एक जानवर पर निकाह करता हूं, तो यहां तो पता ही नहीं कौन सा जानवर है, जिंस का ही नहीं पता, बकरी है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, क्या चीज है, हैवान की जिंस का ही पता नहीं। या अगर दाब्बा का उर्फी माना कर लें, उर्फ में दाब्बा किसे कहते हैं, सवारी और बारबरदारी के जानवर को, यानी घोड़ा गधा और खच्चर, तो भी देखो जहालत है। मैं तुमसे एक दाब्बा पर निकाह करता हूं, भाई दाब्बा तो घोड़े को भी कहते हैं, दाब्बा तो खच्चर को भी कहते हैं, दाब्बा तो गधे को भी कहते हैं, और फिर हर एक के अंदर आला भी होगा, मुतवस्सित भी होगा, अदना भी होगा, तो यह बहुत ज्यादा जहालत आ गई। तो इस सूरत में तस्मिया ही फासिद होगा और क्या आ जाएगा, महरे मिसल। कहते अम्मा इदालम युसम्मल जिंस, तो बाकी अगर जिंस को ही जिक्र न किया जाए, भी अं यतज़व्वजहा अला दाब्बतिन, बाई सूरत के खावंद उस औरत से निकाह करता है एक दाब्बा एक जानदार पर, ला तजूज़ तस्मियतु, तो तस्मिया ही जायज नहीं होगी, व यजिबु महरुल मिसली, और महर मिसल वाजिब होगा। وقال الشافعي رحمه الله يجب مهر المثل في الوجهين جميعا, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مہر مثل واجب ہوگا دونوں صورتوں میں, یعنی چاہے جہالت یسیرہ ہو, हैवान तो जिक्र कर दिया, उसकी जिंस तो जिक्र कर दी लेकिन उसकी सिफत जिक्र नहीं की, या सिरे से जिंस ही जिक्र नहीं की यानी जहालत फाहिशा है, तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं दोनों सूरतों में महर मिसल आएगा। वो फरमाते हैं कि ये निकाह भी बै की तरह है, और उन्होंने जिक्र किया था पीछे बात गुजर चुकी कि जो चीज बै के अंदर समन बन सकती है वो निकाह के अंदर महर बन सकती है, और जैसे जहालत यसीरा से बै फासिद हो जाती है, इसी तरह निकाह के अंदर भी अगर जहालत यसीरा आएगी महर के अंदर तो तस्मिया फासिद हो जाएगा, और जब तस्मिया फासिद होगा तो फिर क्या आ जाएगा, महरे मिसर। भाई जैसे देखो हमने तो बता दिया निकाह के अंदर अगर हैवान की जिंस तो जिक्र कर दी है कि गाय दूंगा लेकिन उसकी सिफत जिक्र नहीं की, तो यह जहालत यसीरा है, यह जायज हो जाएगा और मुतवस्सित गाय देना पड़ेगी। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ गाय को अगर जिक्र किया जाए तो वो बया में समन नहीं बन सकती, वजह यह कि जहालत आ रही है, और जब जहालत आएगी तो बाद में झगड़ा होगा, बाय चाहेगा मैं अदना सी गाय दे दूं और मुश्तरी चाहेगा कि मुझे आला किस्म की गाय मिले, तो लिहाजा मालूम हुआ सिर्फ जिन्स जिक्र किया जाए तो यह हैवान समन नहीं बन सकता। बात समझ में आ गई? तो जब यह समन नहीं बन सकता तो यह महर भी नहीं बन सकता। कहते हैं ली अन्ना इंदहु मा ला यस्लुहु समनन फिल बैई, इसलिए क्योंकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक जो चीज सलाहियत नहीं रखती समन बनने की बै में, ला यस्लुहु मुसम्मन, वो निकाह के अंदर मुसम्मा बनने की सलाहियत भी नहीं रखती। इद कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा मुआवजतुन, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक मुआवजा है। बै भी अकदे मुआवजा है और निकाह भी अकदे मुआवजा है। खावंद अगर महर हवाले करता है तो औरत जो है मुनाफे बुजा हवाले करती है, तो ये दोनों अकदे मुआवजा हैं। वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु मुआवजतु माल इन बिगैरी माल, हम कहते हैं ये जो निकाह है ये बाज एतबार से देखें तो यह अकदे मुआवजा है, बाज एतबार से देखें तो अकदे मुआवजा नहीं। बाज एतबार से यह अकदे मुआवजा है, बाज एतबार से अकदे मुआवजा नहीं। अकदे मुआवजा है बाई लिहाज के खावंद महर दे रहा है तो औरत मुनाफे बुजा हवाले कर रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो यह अकदे मुआवजा नहीं है क्योंकि खावंद जो दे रहा है वह तो माल है और औरत जो है वह मुनाफे बुजा हवाले कर रही है, वह तो माल नहीं है। तो एक तरफ से माल है दूसरी तरफ से माल नहीं, तो बाई लिहाज देखा जाए यह तो अक्द मुआवजा है ही नहीं। अक्द मुआवजा में तो दोनों तरफ से माल होता है, ब्याह के अंदर दोनों तरफ से माल होता है। तो मालूम हुआ निकाह में दोनों जिहतें हैं, जब दोनों जिहतें हैं तो हमने दोनों का एतबार किया, हमने मुआवजा होने का भी एतबार किया और मुआवजा न होने का भी एतबार किया। तो हमने कहा इब्तिदाअन ये निकाह आकदे मुआवजा है ही नहीं, ये गोया खावंद वैसे ही अपने ऊपर एक माल को लाजिम कर रहा है क्योंकि दूसरी तरफ से तो माल नहीं आ रहा, तो ये गोया तबर्रुअ के कबील से है। तबर्रुअ याद रखना, तबर्रुअ का मानना है अपनी तरफ से कोई चीज देना जो आप पर लाजिम नहीं, जैसे आप नफल पढ़ते हैं नफल आप पर लाजिम नहीं तो ये तबर्रुअ है, या जैसे आप सदका और खैरात करते हैं जो आप पर लाजिम नहीं यानी जकात वगैरह नहीं है, वैसे आप अल्लाह के रास्ते में कुछ सदका या खैरात वगैरह करते हैं तो यह भी तबर्रुअ है, यानी एक चीज आप दे रहे हैं जो आप पर लाजिम और वाजिब नहीं। तो जो चीज आप पर लाजिम और वाजिब नहीं और अपनी तरफ से अदा करें उसको तबर्रुअ कहते हैं। तो हम भी कहते हैं ये जो अक़्द निकाह है इब्तिदाअन हमने इसमें मुआवजा न होने का एतबार किया कि यह अकद मुआवजा है ही नहीं, खावंद अपने ऊपर तबर्रुअन माल को वाजिब कर रहा है, यह जो महर को अपने ऊपर वाजिब कर रहा है यह क्या है तबर्रुअन है क्योंकि दूसरी तरफ से तो माल नहीं आ रहा भाई। जब यह तबर्रुअन अपने ऊपर एक चीज को लाजिम कर रहा है तो इसमें थोड़ी बहुत जहालत आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें थोड़ी जहालत आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हां जहालत फाहिशा नहीं होनी चाहिए। तो इब्तिदाअन अक़्द मुआवजा है ही नहीं, जब मुआवजा नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत जहालत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बै वो तो अक़्द मुआवजा है वहां थोड़ी जहालत भी झगड़े की तरफ ले जाएगी। बात समझ में आ गई? देखिए भाई कहते हैं वलाना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहु मुआवजतु मालिन बिगैरी मालिन, कि निकाह जो है यह मुआवजा है माल का गैर माल के साथ, एक तरफ से तो माल है दूसरी तरफ से तो माल नहीं, मुनाफे बुज़ा हैं, तो यह मुआवजा है माल का गैर माल के साथ, यानी यूं कहो ये बाज एतबार से यह मुआवजा है और बाज एतबार से यह मुआवजा नहीं है। फजअलनाहु इल्तिज़ाम अल-माल इब्तिदाअन, तो हमने इसको करार दिया इल्तिज़ाम अल-माली माल को अपने ऊपर लाजिम करना इब्तिदाअन इब्तिदा के एतबार से। हम कहते हैं इब्तिदा के एतबार से यह क्या है खावंद वैसे ही अपने ऊपर माल को लाजिम कर रहा है, यह तबर्रुअ है क्योंकि दूसरी तरफ से माल नहीं आ रहा। हत्ता ला यफ्सुदु बि असलिल जहालती, तो जब इब्तिदा के एतबार से यह इल्तिजाम माल है अपने ऊपर माल को लाजिम कर रहा है तो अब यह थोड़ी बहुत जहालत आ भी जाए तो कोई हरज नहीं। ये माना है हत्ता ला यफ्सुदु बि असलिल जहालती, यहां तक कि ये फासिद नहीं होगा असले जहालत से, यानी नफ्स से जहालत आ जाए तो उससे ये फासिद नहीं होगा। हां जहालत फाहिशा आ जाए फिर तस्मिया ही सही नहीं, फिर महरे मिसल आ जाएगा। हत्ता ला यक्सुदु भी असलील जहालती, तो ये नफ्स जहालत से फासिद नहीं होगा, यानी थोड़ी बहुत जहालत आ जाए। कद्दियत इवल अकारीरी, जैसे कि दियत है और इकरार है, अकारीर जमा है इकरार की। जैसे दियत है भाई, देखो किसी शख्स से गलती से कोई कत्ल हो जाए तो उस पर दियत आती है, 100 ऊंट देने पड़ते हैं उसको, लेकिन शरीयत ने उन ऊंटों की तफसील नहीं बयान की कि आला होंगे या अदना होंगे या मुतवस्सित होंगे। तो वहां पर भी देखो, वो जो माल दे रहा है वो कोई अक़्द मुआवजा तो नहीं है भाई। तो दियत जो है देखो, उसमें नफ्स जहालत मौजूद है, लेकिन इससे कोई हरज लाजिम नहीं आता, जहालत के बावजूद शरीयत ने इसको वाजिब किया है। और इसी तरह इकरार, कोई शख्स किसी के बारे में इकरार करता है कि मसलन जैद की एक बकरी मेरे जिम्मा है, अब बकरी तो आला भी हो सकती है, मुतवस्सित भी हो सकती है, अदना भी हो सकती है, लेकिन फिर भी उसका यह इकरार सहीह है जहालत के बावजूद, क्योंकि यह कोई अक़्द मुआवजा नहीं है। तो जब दियत और इकरार जो अक़्द मुआवजा नहीं है वहां पर नफ्स जहालत की गुंजाइश है, तो निकाह भी इब्तिदाअन अक़्द मुआवजा नहीं, तो उसमें भी नफ्स जहालत की गुंजाइश होगी, अलबत्ता जहालत फाहिशा की गुंजाइश नहीं होगी। तो कहते हैं हत्ता ला यफ्सुदु भी असलील जहालती, यहां तक कि निकाह फासिद नहीं होगा नफ्स जहालत की वजह से। कद्दियत वल अकारीरी, जैसे कि दियत है और इकरार है। व शरतना अन यकून अल मुसम्मा मालं वसतुहु मालूमुन, व शरतना, और हमने ये शर्त लगा दी, अन यकून अल मुसम्मा, कि वो चीज जिसको मुकरर किया गया है मालन, वो ऐसा माल हो, वसतुहु मालूमुन, जिसका वसत मालूम हो। भाई देखो ये इबारत समझ लो, मालन ये है नकेरा, और वसतुहु मालूमुन ये पूरा जुमला इस्मिया है, वसतुहु यह है मुबतदा और मालूमुन है उसकी खबर, तो यह पूरा जुमला इस्मिया आया नकेरा के बाद, और नकेरा के बाद जुमला फिअलिया या जुमला इस्मिया आए तो वह अमूमन उसकी सिफत बनता है। तो यह वसतुहु मालूमुन यह सिफत है माल की, और मौसूफ सिफत का तर्जमा फिर कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। तो देखो वह शरतना, और हमने शर्त लगा दी कि यकून अल मुसम्मा, कि वो जो मुसम्मा है, वो जो मुकर्ररा चीज है, मालं वसतुहु मालूमुन, वो ऐसा माल होना चाहिए जिसका वसत मालूम हो, यानी जिसका मुतवस्सित दर्जा मालूम हो। ये अब इंतहा के एतबार से कह रहे हैं, इब्तिदा के एतबार से निकाह हक़्द मुआवजा नहीं, लिहाजा जहालत यसीरा आ जाए कोई हरज नहीं, और इंतहा के एतबार से यह हक़्द मुआवजा है, लिहाजा ऐसा माल होना चाहिए जिसके वसत का पता चल सके, ताकि मियां बीवी दोनों की रियायत हो जाए जी। ऐसा इवज आना चाहिए जिसका वसत मालूम हो, ताकि मियां बीवी दोनों की रियायत हो जाए। दोनों की रियायत किस तरह होगी, कि अगर आला को वाजिब करेंगे तो खावंद का नुकसान है, अगर अदना को वाजिब करेंगे तो बीवी का नुकसान है, तो हम दोनों की रियायत रखते हुए मुतवस्सित को वाजिब करेंगे, क्योंकि अक़्द मुआवजा है इंतहा के एतबार से, और इसमें दोनों की रियायत होनी चाहिए जी। तो कहते हैं वशारतना, और हमने शर्त लगाई, ये यानी इंतहा के एतबार से अक़्द मुआवजा है, तो हमने ये शर्त लगाई, वशारतना, और हमने ये शर्त लगा दी, अन यकून अल मुसम्मा मालं वसतुहु मालूमुन, के मुसम्मा जो है वो ऐसा माल होना चाहिए जिसका वसत मालूम हो, रियायतन लिल जानिबैनी, दोनों जानिब की रियायत करने के लिए, यानी खावंद और बीवी की, कि किसी का भी नुकसान ना हो, मुतवस्सित दर्जे की चीज उस पर वाजिब की जा सके। वदालिका इंदा एलाम इल जिनसी, और यह उसी वक्त होगा, एलाम का माना है खबर देना, इत्तला देना, वदालिका इंद एलाम इल जिनसी, और यह जिन्स की इत्तला देते वक्त ही होगा, यानी जिन्स जब बतला दी जाएगी कि घोड़ा दूंगा या गाय दूंगा, तो अब उस हैवान के वसत का पता चल सकेगा, और अगर जिन्स ही जिक्र ना की तो फिर तो वसत का पता नहीं चलेगा, क्योंकि हैवानात मुख्तलिफ हैं और हर एक के मकासिद अलग अलग हैं भाई, मकसद एक है ही नहीं। कुछ हैवानात के अंदर गोश्त मकसूद होता है, कुछ हैवानात पर सवारी मकसूद होती है, कुछ हैवानात के लिए पर बारबरदारी वगैरह मकसूद होगी, कुछ के अंदर दूध वगैरह मकसूद होगा। तो मकासिद ही मुख्तलिफ हैं भाई, एक मकसद होता तो वहां भी वसत की कोई गुंजाइश निकल आती, लेकिन जब मकसद ही अलग अलग हैं तो फिर वहां वसत का कैसे पता चल सकता है। लिहाजा जिंस का कम से कम पता जरूर होना चाहिए, अगर जिंस का ही पता नहीं है तो फिर जहालत फाहिशा आ जाएगी, फिर तस्मिया ही सही नहीं, फिर महरमी सल आ जाएगा जी। तो कहते हैं वदालिका इंद एला मिल जिनसी, और ये जो वसत का पता चलेगा जब जिन्स की खबर दे दी जाए, ले अनहु यश तमिलो अलल जयदी वर रदी इवल वसती, इसलिए क्योंकि जिन्स जो है वो मुश्तमिल होती है अलल जयदी उमदा पर, वर रदी और रद्दी चीज पर, वल वसती और मुतवसित चीज पर। जिन्स के अंदर हर तरह की चीजें आ जाती हैं, आला भी अदना भी और मुतवसित भी। वलवसतु जू हजिम मिन हुमा, और वसत जो है जू हजिन, हा और जो है जो, जू हजिन हिस्से वाला है, जू माल का क्या माना माल वाला, तो जू हजिन का माना है हिस्से वाला। वलवसतु जू हजिम मिन हुमा, और वसत जो है वो हिस्से वाला है, मिन हुमा दोनों की तरफ से, ये जो वसत है इसमें दोनों तरफ से हिस्सा आ रहा है, आला की तरफ से भी हिस्सा आ रहा है और अदना की तरफ से भी, यानी ये जो वसत है ये आला भी है अदना भी है। किस तरह? देखो, एक है आला, फिर एक वसत और एक अदना, तो ये जो वसत है अदना से आला है, ये वसत जो है अदना से आला है, और इसी वसत को आला के साथ जरा मिलाएं, ये जो वसत है आला के एतबार से अदना है, तो इस वसत ने दोनों तरफ से हिस्सा आ गया, ये बाज एतबार से देखा जाए तो आला है, बाज एतबार से देखा जाए तो अदना है, अदना की निस्बत से ये आला और आला की निस्बत से ये अदना है, तो ये दोनों तरफ से हिस्सा ले रहा है, तो इसमें दोनों की रियायत हो गई। तो कहते हैं वलवसतु ज़ू हज़्म मिन्हुमा, और वसत जो है दोनों से हिस्सा लेने वाला है। देखा, इंसान हैरान होता है साहिब हिदाया की फसीह व बलीग इबारतों पर भाई, कितने मुख्तसर लफ्जों में अजीब दलाइल और निकात वो जिक्र फरमाते चले जा रहे हैं भाई। कहते हैं बिखिलाफ ही जहालतिल जिन्सी, बखिलाफ जिन्स की जहालत के, अगर जिन्स ही मजहूल है, मैंने बताया फिर वसत का पता नहीं चल सकता, क्योंकि हैवानात के जिन्सों के मकासिद अलग अलग होते हैं, किसी में गोश्त मकसूद है, किसी में सवारी मकसूद है, तो मकसद अलग है, तो अब वसत का पता नहीं चल सकता। कहते हैं बिखिलाफी जहालतिल जिन्सी, बखिलाफ जिन्स के मजहूल होने के, लिअन्नहु ला वासिता ता लिख्तिलाफी मानिल अजनासी, आपकी किताब में भी यही इबारत है, लिअन्नहु ला वासिता था, याद रखो ये किताबत की गलती है, ये दुरुस्त इबारत यूं है, लिअन्नहु ला वसता लहू, लिअन्नहु ला वसता लहू, जब जिन्स के अंदर जहालत आ जाए तो फिर उसका कोई वसत नहीं है, लिअन्नहु ला वसता लहू, इसलिए क्योंकि जिन्स जब मजहूल हो जाएगी तो उसका कोई वसत नहीं है भाई। क्यों उसका वसत क्यों नहीं है? कहते हैं लिख्तिलाफी मानिल अजनासी, इस वजह से कि जिन्स के जो मकासिद है वो मुख्तलिफ होते हैं। मानी जमा है माना की, और माना का एक माना जो है, एक मतलब जो है वो मकसद भी है, तो यहां मानी का तर्जमा क्या करें? मकासिद के। तो कहते हैं लिअन्नहु ला वसत लहू, इसलिए क्योंकि इसका कोई वसत नहीं है, लिख्तिलाफी मानिल अजनासी, इस वजह से कि जिन्सों के मकासिद जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, किसी में गोश्त मकसूद है, किसी में सवारी वगैरह मकसूद है, तो वहां वसत का पता नहीं चल सकता। वह बिखिलाफिल बैई, और बखिलाफ बैअ के, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने बैअ पर कियास किया था, उसका भी जवाब दे रहे हैं कि नहीं, आप निकाह को बैअ पर कियास नहीं कर सकते, निकाह को ब्याह पर कयास नहीं कर सकते। वजह यह कि ब्याह जो है उसकी बुनियाद तंगी पर है, ब्याह में तंगी की जाती है। भाई मुश्तरी आपस में बहस करते हैं, भाई की कोशिश होती है कि चीज महंगे दामों में फरोख्त करूं और मुश्तरी की कोशिश होती है कि मैं कम कीमत में इसको खरीद लूं, तो ब्याह की बुनियाद तंगी पर है और जबकि निकाह की बुनियाद नरमी पर है। तो कहते हैं वह बिखिलाफ अलबैअ और बखिलाफ बैअ के लिए अन्ना मबनाहु अलल मुज़ायकति वल मुमाकसति, लिअन्ना मबनाहु इसलिए क्योंकि बैअ की जो बुनियाद है अलल मुज़ायकति ज़ाद के साथ है भाई, अलल मुज़ायका ज़ायक किसे कहते हैं, तंग को, तंग तो अलल मुज़ायकति यानी तंगी करना, तंगी करना। और मुमाकसत का माना है कमी करवाना। बैग के अंदर दोनों क्या करते हैं, तंगी करते हैं। बाय की कोशिश होती है मैं ज्यादा पैसे लूं, मुश्तरी की कोशिश होती है मैं कम पैसे दूं, और नीज उसकी बुनियाद मुमाकसत पर होती है यानी मुश्तरी उसमें कमी करवाने की कोशिश करता है। तो कहते हैं वह बिखिलाफ अलबैअ बखिलाफ बैअ के लिअन्ना मबनाहु अलल मुज़ायकति वल मुमाकसति, इसलिए क्योंकि बैअ की जो बुनियाद है वो मुज़ायका यानी तंगी तंगी पर है, वल मुमाकसति और कमी करवाने पर है। अम्मन निकाह फमबनाहु अलल मुसामहति और बाकी निकाह जो है तो उसकी बुनियाद जो है मुसामहा पर है, चशम पोशी करना यानी खुले दिल से काम लेना, फराख दिली करना, नरमी करना। तो कहते हैं निकाह जो है फमबना हुआ अलल मुसामहती उसकी बुनियाद जो है मुसामहत यानी फराख दिली पर है। व इन्नमा यतखय्यरु जी, अब वही वजह जिक्र कर रहे हैं कि हैवान जिक्र किया और फिर खावन को इख्तियार मिलेगा, चाहे वो उसी किस्म का मुतवस्सित हैवान दे दे और चाहे तो उस मुतवस्सित हैवान की कीमत दे दे। तो ये इख्तियार क्यों दिया उसको, मैंने वजह जिक्र कर दी कि एक एतबार से कीमत असल है क्योंकि मुतवस्सित का पता ही कीमत से चलता है, और दूसरे एतबार से वो हैवान असल है क्योंकि उसको लफ्जों में बाकायदा जिक्र किया था, तो दोनों असल हैं तो दोनों दे सकता है, खावन को इख्तियार है। तो कहते हैं वह इन नमा यतखय्यरु और खावन को इख्तियार होगा लिअन्न अलवसत ला युअरफु इल्ला बिल कीमती, इसलिए क्योंकि मुतवस्सित चीज जो है उसको जाना नहीं जाता मगर कीमत के जरिए ही। फसारत असलन फी हकिल ईफाई, तो इस एतबार से कीमत असल हुई अदायगी के हक में। वल अब्दु असलुन तस्मियतन, और गुलाम तो असल है तस्मिया के एतबार से। मसलन गुलाम जिक्र किया, अब गुलाम तो आला भी हो सकता है, मुतवस्सित भी हो सकता है, अदना भी हो सकता है, तो चाहे तो इस मुतवस्सित दर्जे के गुलाम की कीमत दे दे और चाहे मुतवस्सित गुलाम दे दे। कीमत क्यों, क्योंकि मुतवस्सित का पता ही कीमत से चलता है। और गुलाम क्यों दे सकता है मुतवस्सित, क्योंकि जिक्र उसी का हुआ था। तो कहते हैं वल अब्दु असलुन तस्मियतन, और गुलाम जो है वो असल है तस्मिया के एतबार से। फयतखय्यरु बैनहुमा, तो खावन को इख्तियार होगा इन दोनों के दरमियान, वो जो भी अदा करना चाहे अदा कर सकता है। आगे देखिए व इन तज़व्वजहा अला सौबिन गैर मौसूफिन फलहा महरुल मिसली, भाई याद रखो ये जो चीजें हैं ना, चीजें ये कुछ मिसलियात हैं और कुछ ज़वातुल क़ियम हैं। मिसलियात भाई वो चीजें जिनका मिसल बाजार से मिल जाता है, और जिन चीजों का मिसल बाजार से न मिले उनको ज़वातुल क़ियम कहते हैं, यानी कीमत वाली चीजें, वो कीमत वाली चीजें हैं उनका मिसल नहीं मिलता। जिन चीजों का मिसल मिलता है वो तीन चीजें हैं भाई, एक मकीलात हैं, मौजूनात हैं और मादूदात मुतकारिबा हैं। मकीलात कुछ चीजों को मैंने बताया बर्तनों में माप कर बेचा जाता है, जैसे कदीम जमाने में गंदम को बर्तन में माप कर बेचा जाता था और वो बर्तन कफीस कहलाता था, या जैसे आप बाजार से दूध लेने जाते हैं वो एक बर्तन में दूध माप कर आपको देता है एक लीटर या दो लीटर, या इसी तरह आप पेट्रोल डलवाते हैं गाड़ी में तो वहां भी उसकी मखसूस मकदार जो है एक लीटर दो लीटर तीन लीटर जितना आप पेट्रोल गाड़ी में डलवाना चाहें। तो ये है मकीलात जिनको मापा जाता है बर्तन वगैरह में, और कुछ मौजूनात हैं जिनका वजन किया जाता है, जैसे आप चीनी खरीदते हैं, बात समझ में आ गई, तो इसको वजन करके बेचा जाता है। और कुछ चीजें जो है मादूदात उनको गिना जाता है, मसलन अंडे जो हैं वो गिन कर बेचे जाते हैं कि एक दर्जन इतने के हैं, दो दर्जन इतने के हैं। तो ये मादूदात हैं जिनको शुमार किया जाता है, और ये मादूदातें मुतकारिबा हैं यानी एक दूसरे के करीब करीब हैं, एक जैसे हैं। भाई देखो हर अंडा दूसरे अंडे जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है, बाज़ों का तो फर्क वाज़ह नजर भी आ रहा होता है, लेकिन फिर भी इस फर्क को शुमार नहीं किया जाता भाई। तो इनको क्या कहते हैं, मादूदाते मुतकारिबा। तो ये जो चीजें हैं ये मिसलियात हैं भाई, इनका मिसल बाजार से मिल जाता है। मसलन आप बाजार से अंडे लेने जाते हैं, हर दुकान से आपको अंडे मिल जाएंगे। आप बाजार से गंदुम लेने जाते हैं, हर दुकान से आपको गंदुम की हर दुकान से वो गंदुम आपको मिल जाएगी। तो ये मकीलात, मौजूनात और मादूदात मुतकारिबा, इनको मिसलियात कहा जाता है कि इनका मिसल मिल जाता है। इसके अलावा और चीजें जो हैं मादूदात जो हैं वो ज़वातुल क़ियम कहलाती हैं, यानी कीमत वाली हैं, मसलन गाय बैल बकरी वगैरह। अब गाय बैल बकरी वगैरह मादूदात में से हैं, इनको शुमार किया जाता है, लेकिन ये ज़वातुल क़ियम हैं, इनमें से हर एक की कीमत अलग अलग होगी। आप दो गाय खरीदना चाहते हैं तो हर गाय की अलग कीमत मुकर्रर की जाती है। तो मालूम हुआ ये गाय वगैरह और चीजें जो हैं वो ज़वातुल क़ियम में से हैं। तो अब आपको साहिब हिदाया मसला बतलाएंगे, जाबता समझ लो। जाबता यह है कि जवातुल कियम चीजों के अंदर खावंद को इख्तियार मिलेगा। जवातुल कियम चीजों में खावंद को इख्तियार मिलेगा कि मसलन उसने गाय मुकरर की थी, और गाय किस में से है, जवातुल कियम में से। एक गाय का मिसल आपको बाजार से नहीं मिल सकता। जाहिरी तौर पर दो गाय बेशक एक जैसी हों, दो बकरियां बेशक एक जैसी हों, लेकिन बातनी सिफात एक जैसी नहीं हो सकती भाई। एक बकरी हो सकता है दूध कम दे, एक दूध ज्यादा दे, या एक गाय है वो आराम से दूध निकालने देती है, दूसरी गाय आराम से दूध नहीं निकालने देती। तो जाहिरी तौर पर बेशक एक जैसे भी जानवर क्यों ना हो, बातनी तौर पर मुख्तलिफ होंगे। तो ये मादूदात तो हैं, लेकिन इनमें से हर एक की अलग कीमत तय की जाती है, ये ज़वातुल क़ियम हैं। तो जब खावन ने ज़वातुल क़ियम मसलन कोई गाय जिक्र की थी, तो ज़वातुल क़ियम के अंदर याद रखो खावंद को इख्तियार होता है, वो ही वाली चीज मुतवस्सित दर्जे की वो भी दे सकता है, और मुतवस्सित दर्जे की उस चीज की कीमत भी दे सकता है। जबकि जो चीजें मिसलियात हैं इनका मिसल बाजार से मिल जाता है। तो अगर वो चीज भी बयान की और उसका वसफ भी बयान कर दिया, मसलन मैं तुम्हें 100 मन गंदुम दूंगा और आला क्वालिटी की गंदुम दूंगा, सिफत भी जिक्र कर दी, तो फिर इस सूरत में वो गंदुम ही देना पड़ेगी। क्या देना पड़ेगी, गंदुम ही देना पड़ेगी, इसलिए क्योंकि उसने मिसलियात को जिक्र किया और उसका वसफ भी बाकायदा बयान कर दिया। और अगर वसफ बयान नहीं किया तो फिर इस सूरत के अंदर भी मुतवस्सित दर्जे की गंदुम आ जाएगी, और मुतवस्सित गंदुम भी दे सकता है उतनी, या उसकी कीमत भी दे सकता है। लेकिन अगर वसफ जिक्र कर दिया है तो फिर वो गंदुम ही देना पड़ेगी। यानी जबरन खावंद उसकी कीमत देना चाहता है, जबरन खावंद ऐसा नहीं कर सकता। मसलन देखो, एक शख्स ने एक औरत से निकाह किया और क्या कहा, मैं तुम्हें 100 मन आला किस्म की गंदुम दूंगा जी। और गंदुम किस में से, मिसलियात में से, और साथ वसफ भी जिक्र कर दिया, आला किस्म की गंदुम दूंगा। और फिर अब वो खावंद जो है उस गंदुम की कीमत देना चाहता है, और औरत चाहती है नहीं मुझे गंदुम ही लाकर दे, तो खावन जबरन कीमत नहीं दे सकता। हां औरत राजी है तो फिर तुम मर्जी है उनकी आपस में, खावन कीमत भी दे सकता है। यहां जबरन की बात चल रही है कि जबरन फिर खावंद कीमत नहीं दे सकता, वो जो मिसली चीज बयान की है और उसका वसफ भी बयान किया है वो ही चीज ही लाकर देना पड़ेगी। लेकिन अगर आपस में राजी हो जाते हैं फिर कीमत भी दे सकता है। ज़ाब्ता समझ में आ गया, ज़वातुल क़ियम में खावंद को इख्तियार होता है, और मिसलियात में अगर वसफ बयान ना करे वहां भी खावंद को इख्तियार है, लेकिन मिसलियात में अगर वसफ बयान कर दे तो फिर वो वसत ही देना पड़ेगा, जबरन उसकी कीमत नहीं दे सकता। तो कहते हैं वही तज़व्वजह अला सौबिन गैर मौसूफिन, और अगर खावंद ने निकाह किया अला सौबिन गैर मौसूफिन, एक गैर मौसूफ कपड़े पर। मसलन ये तो कहा मैं तुम्हें 50 थान दूंगा, लेकिन कपड़े की नौ नहीं बयान की कि किस किस्म वाला कपड़ा होगा। तो याद रखो ये जो कपड़ा है ना, ये कदीम जमाने में हाथ से बनाया जाता था, तो हर कपड़ा दूसरे से मुख्तलिफ होता था, बनाने वाला मुख्तलिफ है, फिर कहीं हाथ हिल गया तो वो धागा हिल जाता वगैरह, तो हर कपड़ा दूसरे कपड़े से मुख्तलिफ होता था। तो ये हर किस्म का कपड़ा अलग जिंस शुमार होता था, फिर हर जिंस के अंदर आला भी हो सकता है, मुतवस्सित भी हो सकता है और अदना भी हो सकता है, तो कपड़ा कई जिंसें शुमार होता था। तो अब खावन ने एक औरत से निकाह किया, सिर्फ कपड़ा जिक्र किया, जींस भी नहीं जिक्र की कि फुला किस्म का कपड़ा दूंगा या फुला किस्म का, आला अदना की बात नहीं कर रहा। मसलन मैंने बताया कपड़ा मुख्तलिफ जिंसें शुमार होता था, फुला इलाके का कपड़ा मसलन वो एक जिंस है, अब उस इलाके में भी आला भी होगा अदना भी होगा और मुतवसित, या इसी तरह कपड़े के मकासिद अलग होते हैं, बाज सर्दियों के कपड़े हैं, बाज गर्मियों के कपड़े हैं, बाज और वैसे जेबो जीनत के लिए हैं, सिर्फ सूरत समझ में आ रही है, तो कपड़े के मकासिद भी अलग हैं, तो कपड़ा मुख्तलिफ जिंसें शुमार होता था। तो उसने सिर्फ कपड़ा कहा, उसकी जिंस यानी उसकी किस्म ही सिरे से जिक्र नहीं की। तो अगर किस्म जिक्र कर देता है कि मसलन मैं तुम्हें फुला इलाके का जो कपड़ा है वो तुम्हें दूंगा, तो फिर अब उसकी किस्म का पता चल गया, तो उस किस्म में से मुतवस्सित दर्जे वाला आ जाएगा, उस किस्म में से मुतवस्सित दर्जे वाला भाई। और याद रखो ये कपड़ा जवातुल कियम में से है, लिहाजा उस किस्म का मुतवस्सित कपड़ा भी खावन दे सकता है और उसकी कीमत भी दे सकता है। तो कहते हैं वही तजव्वजहा अला सौबिन गैर मौसूफिन, और अगर उस शख्स ने निकाह किया उस औरत से अला सौबिन एक ऐसे कपड़े पर, गैर मौसूफिन जिसकी सिफत बयान नहीं की, सिर्फ इतना कहा है कपड़ा है, उस कपड़े के मसलन कपड़े के 50 थान मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसकी सिफत और जिंस और उसकी किस्म बयान नहीं की। फलहा महरुल मिसली, तो फिर उस औरत के लिए महर मिसल होगा, क्योंकि तस्मिया में जहालत फाहिशा आ गई, किस्म बयान ही नहीं की। वह माना हो, और माना इसका यह है अन्नहुदा का रसौ बवलम यजिद अलैही, कि खावन ने कपड़ा तो जिक्र किया और इस पर कोई चीज नहीं बढ़ाई यानी उसकी नौ नहीं बतलाई। वह वजहू, और वजह इसकी यह है कि महरे मिसल क्यों आएगा, कहते हैं अन्नहादिही जहालतुल जिंसी, क्योंकि ये जिंस की जहालत है, जिंस का ही पता नहीं चल रहा। ले अन्न सियाब अजनासुन, इसलिए क्योंकि कपड़े जो हैं वो कई जिंसे हैं, हर एक मकासिद अलग हैं। वला उसम्मा जिंसन, और अगर उसने जिंस भी बयान कर दी, भी अनकाल हरवी यून बाई सूरत के, उसने कहा हरवी कपड़ा होगा, हरवी हेरात भाई अफगानिस्तान का एक इलाका है, मालूम हुआ वहां के कपड़े आला होते होंगे और मशहूर होंगे, तो खावन भी बीवी से कहता है मैं तुम्हें 50 हरवी कपड़े दूंगा, यानी हेरात में बने हुए, हेरात के बने हुए 50 कपड़े दूंगा। तो कहते हैं वला उसम्मा जिंसन, और अगर खावन ने जिंस बयान कर दी, भी अन काल हरवी यून बाई सूरत की, उसने कहा कि हरवी कपड़ा दूंगा, तसिहु तस्मियतु, तो इस सूरत में तस्मिया सहीह है, अब जहालत फाहिशा नहीं है, जहालत यसीरा है। वह युखय्यरु ज़ौजु लिमा बैयन्ना, और खावन को इख्तियार होगा उस वजह से जो हमने बयान कर दी, वो कीमत भी दे सकता है और मुतवस्सित हरवी कपड़ा भी दे सकता है। वकदा इदाबा लगा फी वस्फ सौबी, और इसी तरह अगर खावन ने मुबालगा किया कपड़े के वसफ में, मसलन अगर खावन ने कपड़े के वसफ में खूब मुबालगा कर दिया कि मैं तुम्हें 50 थान हरवी कपड़े के दूंगा, उनमें से हर कपड़ा जो है इतने गज लंबा होगा और मसलन 2 गज उसकी चौड़ाई होगी और उसमें इस तरह का रंग होगा, सारा कुछ खावन ने बयान कर दिया, कहते हैं फिर भी कपड़ा जवातुल कियम में से है तो जवातुल कियम ही रहेगा, मिसली नहीं बनेगा, क्योंकि शुबा होता है कि खावन ने जब सारा कुछ बयान कर दिया तो अब तो इसको मिसली हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी किस्म का कपड़ा बाजार में जाकर तलाश किया जा सकता है जी। तो कहते हैं नहीं, जितना मर्जी मुबालगा कर दें उसके औसाफ में, कपड़ा फिर भी क्या है, जवातुल कियम में से है तो जवातुल कियम ही में से रहेगा, और खावन को इसी तरह इख्तियार होगा, वो मुतवस्सित कपड़े की कीमत भी दे सकता है और उसी किस्म का मुतवस्सित कपड़ा भी दे सकता है। तो कहते हैं वकदा इदा बालगा फी वस्फ सौबी, और इसी तरह है हुकाम जब कपड़े के वसफ में मुबालगा किया, इसी तरह है हुकाम यानी खावन को इख्तियार होगा। फी जाहिर रिवायत, किसमें? जाहिर रिवायत के अंदर। मैंने बतलाया था कि जाहिर रिवायत जो है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की छह किताबें जो हैं उनको जाहिर रिवायत कहते हैं, और वो छह किताबें कौन सी हैं? मबसूत, ज्यादात, सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर और जामे कबीर। तो मबसूत, ज्यादात, सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर, जामे कबीर, ये छह किताबें, इनको जाहिर रिवायत कहते हैं। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की कुल तसानीफ हजार हैं भाई, तो बाकी तसानीफ को नवादिर कहते हैं। तो इनको जाहिर रिवायत इसलिए कहते हैं कि इनके नकल करने वाले हर हर जमाने में इतने ज्यादा हैं कि हर हर जमाने में तवातुर की हद तक पहुंचे हुए हैं। यानी इतने ज्यादा लोग इसको नकल करने वाले हैं कि इनमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं है। यकीनी बात है कि ये वही किताबें हैं जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने तसनीफ फरमाई थी, इसलिए क्योंकि इतने ज्यादा लोग इनको नकल करने वाले हैं कि इतने लोग झूठ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। जबकि बाकी किताबें नवादिर हैं, यानी उनको रिवायत करने वाले कम है, ज्यादा नहीं है, तो वहां शक और शुबा हो सकता है, किसी ने कुछ लफ्जों को बदल दिया हो, लेकिन इन किताबों में जो जाहिर रिवायत हैं इनमें यह शक और शुबा नहीं होता। तो कहते हैं फिर जाहिर रिवायत, जाहिर रिवायत में लिअन्नहा लैसत मिन ज़वातिल अमसाल, इसलिए क्योंकि ये कपड़ा जो है ये ज़वातुल अमसाल में से नहीं है, तो ये ज़वातुल क़ियम में से है, और जितना मर्जी औसाफ में मुबालगा कर दें फिर भी खावंद के पास इख्तियार होगा, चाहे वही मुतवस्सित कपड़ा दे और चाहे उसकी कीमत दे। तो ये भी जाहिर रिवायत कहा कि जाहिर रिवायत के मुताबिक खावंद को इख्तियार होगा। जबकि नवादिर की एक रिवायत है कि जब खूब मुबालगा कर दे खावंद तो अब वो कपड़ा मिसलियात में से बन गया, और जब मिसलियात हो तो मिसलियात की क्वालिटी वगैरह सारा कुछ जब बयान कर दिया जाए तो फिर वहां वो मिसली ही देना पड़ता है, जबरन उसकी कीमत खावंद नहीं दे सकता। तो यहां भी खावंद को औरत मजबूर कर सकती है, ये नवादिर की रिवायत के मुताबिक औरत खावंद को मजबूर कर सकती है कि मुझे ये जो कपड़ा जिसकी तुमने खूब सिफात बयान की थी यही कपड़ा देना पड़ेगा, इसकी कीमत लेना मुझे मंजूर नहीं है। ये नवादिर की रिवायत है, लेकिन जाहिर रिवायत के मुताबिक खावंद को इख्तियार है। वकदा इदा सम्मा मकीलन और मौजूनन, मकीलात और मौजूनात मैंने बताया मिसलियात में से हैं, और इसमें मैंने बता दिया कि मकीलात और मौजूनात में अगर सिर्फ जिन जिक्र की है, सिफत जिक्र नहीं की, तो फिर इस सूरत में भी वो मुतवस्सित दर्जे का आएगा, चाहे वो ही जिंस मुतवस्सित दर्जे की लाकर दे या उसकी कीमत दे, खावंद को इख्तियार होगा। और अगर खावंद ने वसफ भी जिक्र कर दिया है कि गंदुम दूंगा और आला क्वालिटी वाली दूंगा, तो फिर इस सूरत में खावंद को मिसल ही देना पड़ेगा, यानी वो जबरन कीमत नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वकदा इदा सम्मा मकीलन औ मौजूनन, और इसी तरह खावंद ने अगर मकीली या मौजूनी चीज को जिक्र किया, वसम्मा जिन्स दून सिफती ही, और उसकी जिन्स तो जिक्र की कि मसलन गंदुम दूंगा, दून सिफती ही, और उसकी सिफत जिक्र नहीं की, तब भी इसी तरह मसला है, खावंद को इख्तियार होगा। बतलाया ना वकजा इजा सम्मा मकीलन। तो कहते हैं वह इन सम्मा जिन्स हो व सिफत हो, और अगर उसकी जिन्स और सिफत भी बयान कर दी, ला यो खैयर, फिर खावंद को इख्तियार नहीं होगा। लिअन अल मौसूफ मिन्हा यसबुतु फी जिम्मति सुबूतन सहीहा, इसलिए क्योंकि मिसलियात में से जो मौसूफ होता है यानी जिसकी सिफत बयान कर दी जाए, यसबुतु फी जिम्मति, ये किसी के जिम्मे में साबित हो सकता है, सुबूतन सहीहन सही तौर पर, ये मिसलियात में से जिसकी सिफत बयान कर दी जाए वो किसी के जिम्मे में सही तौर पर साबित होकर रह सकता है, तो लिहाजा वही देना पड़ेगा। फइन तज़व्वज़ मुस्लिमुन अला खमरिन औ खिंज़ीरिन, भाई ये मसला पहले बयान हो चुका, मुसलमान किसी औरत से निकाह करता है और महर शराब या खिंजीर मुकरर करता है, तो इस सूरत में ये तस्मिया सही नहीं, तो क्या आ जाएगा? महरे मिसल। तो कहते हैं फैन तजा वजह मुस्लिम आला खमरिन और खिनजीरिन, अगर मुसलमान ने निकाह किया शराब या खिनजीर पर, फन निकाह हो जायज उन, तो निकाह तो जायज है क्योंकि निकाह शुरू फासिदा से फासिद नहीं होता। वलहा महरूम इसलिहा, उस औरत के लिए महरे मिसल होगा, लिअन नशर तकबूल इलखम्र शर्त उन फासिद उन, इसलिए क्योंकि शराब कबूल करने की शर्त है या इसी तरह खिंजीर कबूल करने की जो शर्त है, शर्त उन फासिद उन, यह शर्त फासिद है। फयसिह निकाह वयल गुश शर्त, तो निकाह तो सही हो जाएगा और शर्त लगव हो जाएगी, उसका कोई एतबार नहीं। बिखिलाफिल बैई, बखिलाफ बै के, लियानहु यबतुलु बिशुरुतिल फासिदति, वो शुरूत फासिदा से बातिल हो जाती है। निकाह तो बातिल नहीं होता शुरूत फासिदा से, ये शर्त फासिद लगाई थी शराब या खिंजीर के कबूल करने की, तो शर्त लगव हो गई और निकाह सही हो गया, जबकि बै ऐसी नहीं है। बै में अगर शर्त फासिद लगाएंगे तो बै ही फासिद हो जाएगी। कहते हैं बिखिलाफिल बै, बखिलाफ बै के, लिया नहू यब तुल भी शुरू तिल फासिदती, वो बै बातिल हो जाती है शुरूत फासिदा से। लाकिन लम तसिह तस्मियतु, लेकिन तस्मिया सही नहीं है, इसको जोड़ें वो जो पीछे आया था फयसिह निकाह, उसके साथ जोड़ें तो निकाह तो सही हो जाएगा। लेकिन लम तसिह तस्मियतु, लेकिन यह तस्मिया सही नहीं है, ये जो शराब और खिंजीर को जिक्र किया है तो ये तस्मिया सही नहीं है। लिमा अन्नल मुसम्मा लैस बिमाल इन फी हकिल मुस्लिमी, इसलिए क्योंकि मुसम्मा यानी शराब और खिंजीर जो है वो मुसलमान के हक में माल नहीं है, तो तस्मिया सही नहीं है। फवजबा महरुल मिसली, तो महरे मिसल वाजिब होगा। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस, बिहादा हुआ अल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।